और आगे आ जाओ, वही जगह पर करो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। पहले राउंड के पहले जमा नाना पंडा की जमा पहले राउंड की है भाई, जरा थोड़ा उठा माशाल्लाह। साथी था पांच है भी कितने थे दूसरे चार नहीं है भाई, अच्छी बात। इसी जोन में चलेंगे दूसरी जमा भाई, कहाँ की जमात है वापस कैसे सर जरा बताओ। अच्छा भाई दूसरे राउंड की आपके साथी कितने थे जरा उठा लो, दूसरे साथी तीसरी क्या करता है के में जो सुबह की जमा चली वो
इसमें ना कर दे
कितने साथ में करते हैं इस जोन में चले एक ही जमा था कि जमा चली और दूसरे जोन में चली। आप कितने साथी थे हाँ हाँ था तो अच्छा छः एक कम आपकी जमात मुकम्मल नहीं जब मैंने तो कहा था कि 10-12 आदमी की जमात बनाने का बेहतर बनने का अल्लाह वजह फरमाए माशाल्लाह। बड़ी बात है कि आप हजरात सोनों में जाकर आए हो, बड़ी कुर्बानी की बात है। इस ठंडी के माहौल में पैदल चलना, वैसे ही जमातों का पैदल चलना, ये बड़ी बात है। मौसम न हो तो भी चलना एक मुजाहिदे की चीज़ थी, और फिर उसके बाद ठंडी के मौसम में पैदल चलना ये और बड़ी बात थी। अल्लाह हज़रात की इस फिक्र को चलने फिरने को कबूल फरमावे और अल्लाह आलमगीर हिदायत का ज़रिया फरमावे। आप हज़रात बड़ा काम करके आए हो, यकीनन आप हम लोगों से अफजल और बेहतर लोग, आप काम करके आए हो, हम तो घरों से आए हैं, अब थक कर आए हो, अल्लाह के रास्ते में चलने फिरने वाला और बैठा हुआ दो बराबर नहीं हो सकते हैं। ये कर्जदारी का जो अमल अभी हो रहा है वो आप हजरत का जायजा और एहतिसाब के लिए नहीं हो रहा कि आपने क्या काम किया, नहीं चल कर आई, यही बहुत बड़ा काम है। अल्लाह के कलमे को लेकर फिरना, देहद देहद जाना, लावारिसों की तरह फिरना, ये कोई मामूली चीज़ है। اور ماشاء اللہ سب اپنے گھر کے سکون سے زندگی گزارنے والے لوگ اس طرح سے پھرے ہیں, یہ بڑی بات ہے. آپ کا اجر اللہ کے وہاں طے ہو گیا, اللہ کے وہاں آپ کا اجر طے ہو گیا, یہ بہت بڑی بات ہے. مشقت تھوڑے دنوں کی تھی, تھوڑے وقت کی تھی, وہ مشقت تو چلی گئی, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس کے ذریعے سے کیا کیا بھلائی, کیا کیا خیر وجود میں آئی ہے. یہاں حضرت ضرور قرضداری سناؤ گے, لیکن اس قرضداری میں ہو سکتا ہے کہ آپ پوری قرضداری بھی نہ سنا سکو, اور ہمارے پاس وقت بھی اتنا نہیں ہے پوری تفصیل سے قرضداری سنائیں. اور بعض جماعتیں تو جان بوجھ کر کچھ عمر ظاہر بھی نہیں کرتی کہ بھائی ہمارے اور ہمارے اللہ کے بیچ میں رہنے میں کیا مسئلہ ہے, تو اس کو ہم کریتے بھی نہیں ہیں. بعض مرتبہ ایسی ہوتی ہے کہ کچھ جماعت پر حالات آ گئے, وہ جماعت ظاہر بھی نہیں کرتی کہ بھائی یہی تو موقع ہوا تھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کا, اب اللہ کے لیے کوئی چیز ہوئی تھی تو اس کو اللہ ہی کے لیے رہنے دو. تو بعض مرتبہ ہم نے دیکھا کہ بعض جماعتوں کی مار پٹائی ہو گئی, کپڑے ان کے پھاڑ دیے, ان کے برتن برتن کھانا وانا سب پھینک دیا, لیکن انہوں نے کاروباری میں بیان نہیں کیا. کئی عمر سے پتہ چلا کہ ان جماعتوں کے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے. کیوں؟ کہ ان کی طبیعت میں یہ تھا کہ بھائی اللہ کے لیے ایک چیز ہوئی تھی, اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دو. تو آپ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ساری چیزیں یا بیان بھی نہیں کر پاؤ گے. بھائی یہاں اوپر آ جاؤ, آپ ساری چیزیں بیان بھی نہیں کر پاؤ گے, لیکن آپ کی ہر چیز اور آپ کی پوری قربانی آپ کا اللہ جانتا ہے. آپ کی ساری چیزوں کو اللہ جانتا ہے, آپ کی وہ ساری چیزیں اللہ کے وہاں جمع ہو چکی ہے, اور اس پر آپ کو اللہ بدلہ دے گا. اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کا بدلہ اللہ دیں گے, من عمل صالحا فلنفسہ, جس نے جو نیکیاں کی ہے اللہ اس کو بدلہ دیں گے. پتہ نہیں اس نیکی کے بدلے میں اللہ پاک آپ کی اور آپ کے نسلوں میں کیا خیر اور بھلائی ڈالیں گے, آپ کو بھی نہیں پتہ ہے. اللہ اسے قبول فرما رہے ہیں. خیر بہرحال آپ حضرات کو اللہ جزائے خیر دے, آپ کام کر کے آئے ہو. میں نے جیسے ذکر کیا اتنا تھک کر آئے ہو, آپ یقیناً ہم لوگوں سے افضل اور بہتر لوگ ہو. ہم لوگ گھروں سے آئے ہیں, آپ جنگلوں میں پھر کر آئے ہو, لاوارثوں کی طرح درختوں کے نیچے اور پتہ نہیں کہاں کہاں پڑاؤ ڈال کر آئے ہو, اللہ کے کلمے کو لے کر اللہ کی نسبت پر لے کر پھرے ہو. آپ کا اجر اللہ کے وہاں کتنا ہو گیا اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے, اس غرض سے کوئی چلے پھرے تو اس کے جسم پر گرد و غبار لگتی ہے, اللہ پاک وہاں جہنم کی آگ تو کیا اس کے دھوئے کو بھی حرام کر دیتے ہیں. تو جس راستے میں گرد و غبار لگنے پر جہنم کی آگ تو کیا دھواں بھی حرام ہو جاتا ہو, اس راستے میں مختلف مجاہدے, مختلف مشقتیں برداشت کرنے پر کیا کیا ملا ہوگا اس کو کوئی شمار کر سکتا ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے, اس غرض سے کوئی چلے پھرے اور اس کا سر میں درد ہو, تو اللہ پاک نے گناہوں کے معاف ہونے کا بدلہ فرمایا ہے. مولانا لے جا رہا سر, یہاں بستر ہے, بستر لگا دو. اللہ پاک نے گناہوں سے معافی کا وعدہ فرمایا ہے. دونوں کی جماعت میں تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں گزرتی ہے, تو ساری چیزیں آپ نے برداشت کی ہے, یہ ساری چیزیں اللہ کے وہاں آپ کی جمع ہو گئی. تو ہم آپ کی جو بھی کارگزاری ہیں سب ساتھی سنیں گے, تو آپ اس کو ایسا نہ سمجھیں کہ ہمارا جائزہ یا ہمارا احتساب کر رہے ہیں. ماشاء اللہ آپ تو کام کر کے آئے, اللہ حضرات کو جزائے خیر دے اور اللہ کی قربانیوں کو قبول فرمائے. لیکن چونکہ یہ ہمارے محنت کا ایک عمل ہے کاروباری, اور یہ مصنون عمل ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام جب جماعتوں کو روانہ کرتے تھے تو روانگی کے بعد سمجھاتے تھے کہ ایسا کرنا ہے, ایسا کرنا ہے, اور واپسی پر ان کی کاروباری پوچھتے تھے کہ کیا ہوا, اگر ایسے ہی ہوا ہے جیسا ہونا تھا تو بہت اچھی بات ہے. کوئی قابل مذاکرہ چیز ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام ان کی رہبری فرما دیتے. تو جماعت آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے فلاں فلاں آدمی کو پچھاڑا, اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا لیکن اس کو پھر بھی مار دیا. تو پوچھا کیوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام, وہ تو موت کے خوف سے کلمہ پڑھ لیا تھا اس نے. تو کیا فرمایا کہ کیا تم نے اس کا سینہ پھاڑ کر دیکھ لیا تھا کہ اس نے موت کے خوف سے پڑھا تھا؟ رہ بھری ایک جماعت جا کر آئی, پوچھا کیا ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے امیر صاحب نے کہا کہ تم آگ میں کود جاؤ. ہم نے اپنے امیر سے کہا کہ ہم تو آگ سے بچنے کے لیے مسلمان ہوئے تھے, اور آپ آگ میں جانے کی بات کر رہے ہو. فرمایا کہ اچھا کہ آپ نے ایسا نہیں کیا, اگر آگ میں چلے جاتے تو ہمیشہ ہی آگ میں رہتے. ہم تو حالات کی قرضداری لیتے تھے, ہم بھی اس عمل کو اسی ذہن سے لیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی مسجد کا یہ عمل تھا, اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں, سننے والے بھی سنانے والے بھی, اور جو جماعتیں جا کر آئی ہے ان کو ہم رشک کی نگاہ سے دیکھیں کہ ماشاءاللہ کیسے کیسے یہ لوگ چلے ہیں پھرے ہیں. یہاں تو وہ ساری باتیں نہیں سنا سکیں گے, لیکن اللہ کے وہاں ان کی ساری باتیں جمع ہو گئی ہے, ان کا چلنا پھرنا, ان کا تھکنا, اور اس کے ذریعے سے جو خیر وجود میں آئی ہے وہ بھی کل قیامت کے دن ظاہر ہوگی, اس کو کوئی یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا. اس لیے جو سنائیں ان کو بھی ہم قابل رشک نگاہوں سے کہ ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہوئی, کہ اتنی بڑی بات کی ان کو توفیق ملی کہ اللہ کے نام کو لے کر پیدل چلنے کی, تو ہم سب ان کو قابل رشک نگاہوں سے دیکھیں گے. قابل مبارک بہت بعض لوگ یہ ہیں ماشاءاللہ. بس اب میں مختصر دو چار باتیں ذکر کرتا ہوں جو جماعت کو سنانی ہیں. جماعت یہ بات سنائے گی کہ آپ کون سے حلقے سے تھے, کون سے حلقے کی آپ کی جماعت تھی, آپ کو محنت کے لیے جو علاقہ دیا گیا وہ کون سا تھا, اس میں آپ کی کتنے دیہات ایسے تھے, کتنے دیہات آپ کو محنت کے لیے دیے گئے تھے جس میں مسجد مدرسہ نہیں تھا یا تھا, اور پانچ مکانوں سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی والے دیہات کتنے تھے, اس میں سے آپ نے کتنوں میں کام کیا, قیام کیا, کتنوں میں قیام ہوا, کتنوں میں کام ہوا, جو آباد دیہات تھے اس میں کیا ہوا, غیر آباد تھے اس میں کیا محنت ہوئی, آپ کے ساتھ کچھ لوگ شریک ہوئے وہاں تعلیم میں, گشتوں میں, ملاقاتوں میں, آپ کے حلقوں میں کچھ لوگوں نے آپ سے کے ساتھ نمازیں پڑھی ہو, ایک گاؤں سے دوسری گاؤں آپ کے ساتھ آئے ہوں, یا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ کسی بھی علاقے میں آپ کے ذریعے سے اذان نماز شروع ہوئی, وہاں مستورات میں کچھ پروگرام ہوا, مستورات سے کچھ بات ہوئی, یہ موٹی موٹی باتیں. اور دوسرا گاؤں کی جماعت اس کے علاوہ یہ بات سنا دیں کہ وہاں سے نقد کتنے لوگوں کو لے کر آئے. بھائی ٹھیک ہے ان شاء اللہ, چلیے آ گیا. پہلے راؤنڈ کی پہلی جماعت کون سی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا مائک قریب کر لیں. ہاں,
اور ساتھی ہمارے اس میں نو ساتھی تھے
ماشاء اللہ.
18 قیام ہم کو دیے گئے تھے. 18 میں ہی ہمارا قیام.
کون سی جگہ پر, کون سے حلقے میں آپ گئے تھے؟
بلساڑ.
ٹھیک. یہ 18 قیام مسجد مدرسے والے تھے, بغیر مسجد مدرسے کے تھے؟
مدرسے والے بھی تھے. اور
اس میں سے کتنے دیہاتوں میں مسجد تھی؟ سات دیہاتوں میں. باقی دیہاتوں میں مدرسہ تھا یا کچھ بھی نہیں؟
عبادت خانہ تھا.
کتنے دیہاتوں میں؟ پانچ میں عبادت خانہ اور سات میں مسجد تھی. 13 ہو گئے. دوسرے پانچ میں
دکان کے
مطلب مسجد مدرسہ نہیں تھا, ہے نا؟ بہت اچھی بات. یہ جو تھے وہاں معمول سے جو سال بھر جماعتیں جاتی ہیں وہ جماعتیں ان دیہاتوں میں جاتی ہیں؟
امک جگہ پہ جاتی ہے.
کتنی جگہ پر جاتی ہے؟ یہ آپ کے 18 میں سے سال بھر جماعتیں جاتی ہو ایسے کتنے دیہات ہیں؟
10
کے قریب ہے جہاں سال بھر جماعت جاتی ہے, ہے نا؟ 8 وہ تھے جہاں نہیں جاتی ہے. یہی ہوا تو بتا دے. ہاں, کبھی کبھی جاتی ہے. اچھا اچھا. میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ جہاں معمول سے سال بھر جماعتیں جاتی ہے وہاں تو ماشاء اللہ جماعتیں جا ہی رہی ہے, ہمیں زون کے ذریعے سے ان دیہاتوں کو کور کرنا ہے جن دیہاتوں میں مسلمان آباد ہے اور وہاں آمد و رفت ہماری نہیں ہو رہی یا جانے کی کوئی شکل نہیں بن پاتی, کیونکہ وہاں کا مسلمان قابل رحم مسلمان ہوتا ہے, اور خصوصاً وہ مسلمان کہ جس دیہات میں نہ مسجد ہے نہ مدرسہ ہے. کیوں؟ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جن دیہاتوں میں مسجد ہے, چاہے وہاں لوگ نماز میں نہیں آتے الگ بات ہے, لیکن مسجد ہے تو وہاں اذان ہو رہی ہے, اور لوگ ایک مسجد کو دیکھ کر ایک محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارا عبادت خانہ ہے اور فلاں اور فلاں, تو اسلام پر ٹکنے کی اور اسلام پر باقی رہنے کی کوئی نہ کوئی چیز ان کے پاس سہارے کے طور پر ہے. اذان کا سننا بڑی بات ہے, مسجد کا دکھنا یہ بڑی بات ہے, لیکن وہ دیہات جن دیہاتوں میں نہ اذان ہوتی ہے نہ وہاں مسجد ہے نہ مسلمانوں کی آمد و رفت ہے, तो वहाँ का मुसलमान तो बहुत ही काबिल रहमत है, उनके पास कोई चीज़ ऐसी होती नहीं है को जो इस्लाम और मुसलमानों को देखें। तो होते होते वो इतने दूर चले जाते हैं, थोड़ा सा धक्का लगाओ घाट से चले जाएँ। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने जोन के मामले में जो हमको देहात दिए, ऐसी मेहनत के उस मेहनत के लिए ऐसे देहातों को मुंतखब करने को कहा जिन देहातों में ना अजान हो रही है ना नमाज हो रही है, या ऐसे मेहनत ऐसे देहात के जहाँ कोई मेहनत की शक्लें नहीं है। खैर बहरहाल इसको जिम्मेदार साथ इसको नोट कर लें कि हमारे ऐसे देहात छूटने नहीं चाहिए। जोन में ऐसे देहातों को मुकदम रखें कि जिन देहातों में जमातों की आमद रफ्त नहीं है, जहाँ मुसलमान हैं, तो ये देहात छूटने नहीं चाहिए। क्योंकि वो देहात जहाँ जमातों की सरबर आमद रफ्त होती है, वहाँ तो कुछ ना कुछ हम मेहनत की शक्ल बना सकते हैं। मान लो कभी कभी जाती है तो अच्छी बात है, उसको ज़्यादा कर लें, लेकिन वो देहात जहाँ नहीं जाती वो छूटने नहीं चाहिए। चलिए आइंदा के जोनों में इसको ख्याल करेंगे आप लोग, है ना दूसरी तरफ जी। चलो हाँ तो तीन दिन के तीन तीन जमातें निकली, वो मानुस देहात थे। आप उन देहातों की कारदारी सुनाएं जो जहाँ मेहनत की कोई शक्ल नहीं थी, वहाँ क्या काम हुआ।
वहाँ से तीन साथी हमारे साथ थे, तीन दिन।
आपके इस पूरे सफर में आप एक एक जगह पर कितने दिन ठहरते थे?
इसी जगह एक दिन।
कितनी जगह पर एक दिन ठहरे?
चार
जगह पर। और दो दिन कितनी जगह पर ठहरे? आठ जगह पर। आठ जगह पर दो दिन और दो जगह पर एक दिन, चार जगह पर एक दिन। और दूसरे दिन कहाँ गुजारे आपने?
किसी जगह तीन दिन चार दिन।
अच्छा, ऐसा क्यों किया आपने? आठ देहातों में दो दिन तो 16 दिन हो गए, चार देहातों में एक एक दिन तो 20 दिन हो गए। 20 दिन आपने मस्जिदों में गुजारे, और आप ये कह रहे हैं कि बंजर देहातों में सहूलत नहीं थी इसके लिए, यही फरमा दिया आपने। रवानगी की बात सुनी थी, तो रवानगी की बात में आपको बंजर देहातों के भेदे के सजल नहीं सुनाए थे, तो फिर इस साल तो सारी जमातें बारिश के दिनों में ही चली है, उसके उसमें आपका अजर बढ़ जाता। अब आपने चार दिन जो गुजारे हैं, चार दिन जो गुजारे कहाँ, अपने मस्जिदों में, अगर ये देहातों को आप कवर कर लेते तो कितने मुसलमानों के देहात कवर हो जाते हैं। इसलिए कि ये जो देहात होते हैं वो देहातों में अगर हमारी ये जमात नहीं जाती तो आइंदा साल तक कोई नहीं जाता है, आमतौर से कोई आमद रफ्त नहीं होती। तो आप अगर वहाँ उन देहातों में चले जाते तो बेचारा मुसलमान, आप देखते वहाँ तो पता नहीं कैसे कैसे कस्बों पर से लोग होते हैं। अभी एक जमात गुजरात के मशहूर में कारदारी सुना रही थी, तो वो मस्जिद के अतराफ में मुसलमान फैले हुए थे, तो जब उनको पैदल मिलने गए तो कोई 8 किलोमीटर पर, कोई 10 किलोमीटर पर, तो वहाँ के मुसलमान ने यह बात सुनाई कि आप 8 साल के बाद 10 साल के बाद हमारे पास मिलने के लिए आए, 8-10 साल हो गए हैं ऐसे मिलने आए हैं। और हम लोग वहाँ गए थे तो हमने देखा ये न मिलने के नतीजे में उनके वहाँ ये हाल हुआ है कि इस्लाम और कुफ्र में कोई फ़र्क ही उनके वहाँ नहीं है। हिंदुस्तान से गए हुए मुसलमान और गैर मुस्लिम जितने भी हैं, वो ये कहते हैं जैसे अरफाती भाई नहीं होते, अरफाती भाई के हम हज में साथ थे, तो वो मेहरम है तो भी ना मेहरम है तो भी अरफाती भाई हो गए, ऐसा कहते हैं। ये तो हमारे साथ अरफात में थे तो भाई हो गए, भाई बहन। तो ऐसे ही हम हिंदुस्तान से गए थे तो सब हम भाई बहन हैं, जिसको जिससे निकाह करना हो। तो शायद कोई घर ऐसा हो कि जिस मुसलमान के घर में हिंदू लड़की ना हो, और कोई गैर मुस्लिम ऐसा ना हो कि जिसका मुसलमान की लड़की ना हो। ये अभी ख़त्म हो गया, ये इसलिए कि इसको किसी ने समझाया नहीं है, समझाने की इन पर मेहनत नहीं हुई है। अमूमन बिरादरान वतन के वहाँ बेटियों का लेना देना हो गया, इतना जौफ आ जाता है। ऐसे ये देहात अभी गुज़िश्ता हम लोग जोन की कारदारी सुन रहे थे, तो एक देहात वालों ने कारदारी सुनाई कि वो बहुत रो रहा था सुनाने वाला कि हम नहीं गए वहाँ, और सदर भाई थे ना वो सुना रहे थे कि वो वहाँ के मकामी हजरात आए और कहने लगे कि आपकी बेटियाँ, देखो आप तो गरीब लोग हो, आपकी बेटियाँ हमारे घर में आ जाएगी ना तो उनको खुशहाली मिल जाएगी। तो उन्होंने अपनी दो बेटियों के निकाह उनसे कर दिए। ये हमारे जाने की कमी की बात रह जाती है, हमारे थोड़े दिन की मशक्कत, थोड़े वक्त का झेलना, लेकिन बेचारे को संभलने का जरिया मिल जाता है। आइंदा इंशाल्लाह इसका ख्याल करेंगे। आप टेंट लेकर गए थे, तंबू लेकर गए थे, तो फिर टेंट लेकर गए थे फिर क्या मसला था? हाँ भाई, टेंट लेकर गए थे ना, और गुज़िश्ता एक जमात ने कारदारी सुनाई थी कि हम लोग बारिश में थे और जिस बस्ती में थे तो बारिश जब आई तो अभी इस जोन में नहीं, अगले राउंड में सुनाया था गुज़िश्ता दिनों में। क्या सुनाया? कि हम बारिश के दिनों में थे तो हमने 3 प्लास्टिक ले लिए। एक प्लास्टिक हमने बिछा दिया, उस पर हम बैठ गए, एक प्लास्टिक पर हमने सामान लपेट दिया और एक प्लास्टिक हम सरों पर लेकर बैठ गए। या अल्लाह, ये मैंने क्या दिया आपने सुन लिया। लेकिन जिस जमात ने रात ऐसे गुजारी होगी, उस जमात से पूछो कि कैसे गुजरी होगी, और उस जमात के इस तरह से रात गुजारने पर अल्लाह कितने खुश हुए होंगे, और अल्लाह ने पता नहीं उसके असरात दुनिया में क्या क्या डाले होंगे, हम सोच सकते हैं। हमारे एक बुजुर्ग थे दिल्ली में, वो बंगले वाली मस्जिद पहुँचे और लोगों से कहने लगे कि भाई यहाँ क्या अमल हो रहा है। तो किसी ने कहा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं, जो रोज़ाना के मामूल है वही हो रहे हैं। तो कहा नहीं कोई बात है, तो उनको कोई जवाब नहीं मिला, तो वो वापस जाने लगे। तो वो आदमी कहने लगे कहाँ एक बात है। तो क्या बात है? आज पैदल जमात जा रही है, आज पैदल जमात गई है या जा रही है। कहाँ? तभी तो मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह का कहर उसके मेहर से बदल गया। अल्लाह का कहर मेहर से बदल रहा है, अल्लाह की नाराजगी रजा से बदल रही है। कि ये चलना बड़ी बात होती है। तो आपका इस तरह से कसमा कुर्सी के साथ चलना अल्लाह को कितना रहम आ जाता है। आप तो बड़े बड़े फैसले अल्लाह के पास करवा देते, आइंदा इसका ख्याल करेंगे इंशाल्लाह। चलें, बहुत अच्छी बात। तो इस देहातों में बस 2-3 बातें और, कि इन देहातों में आपके साथ कितने लोग शरीक हुए? पूरे सफर में आपके साथ कितने लोग शरीक हुए? कोई नमाज में, कोई तालीम में, कोई हलकों में, जहाँ भी शरीक हुए हो, कितने हुए? माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने उनसे इख्तलाफ किया, उनमें से किसी ने कुछ वक्त आपके साथ लगाया, एक दिन दो दिन, कितने लोगों ने लगाए?
10-12
सच्चों ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उनमें क्या काम हुआ? आप जिस देहात में जाते थे उस देहात में 100% मुसलमानों से मिलने की कोशिश करते थे। आपने कितने देहातों में 100% मुलाकातें की? ज़रा ऊपर माइक करके 6-7 देहातों में। माशाल्लाह। बाकी देहातों में क्यों छूट गई मुलाकातें 100%?
शरीफा बीरा देवी के लोग से दूर दूर दुकान के लिए जाते हैं।
अच्छा, फिर
2-3 चक्कर लगा देते
हैं वो सुबह में या रात में
जाते हैं। जाते थे फिर जाने के पहले वही निकल जाते हैं।
अच्छा,
मुलाकात रही गई।
अच्छा, आपके दस्तरखान पर आपने उनको बुलाया था कभी? खाने के साथ बुला लेते? बुलाया था तो खाने पर नहीं तशरीफ लाए?
कोई कोई साथी आते थे।
आपने कोशिश तो की? चला, खैर अल्लाह खैर फरमाए। अच्छा, इन देहातों में मस्तूरात से कई कई बात हुई?
3-4 जगह पर
उमूमी बात हुई आपने। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो घरों में मिलने आप जाते थे तो घरों में कैसे मिलते थे? उनके घर में बैठकर इस तरह बात करते थे कि उनके मस्तूरात तक भी बात पहुंच जाए, या उनको बाहर बुलाकर बैठकर बात कर, कैसे बात होती थी?
होटल के ऊपर बात।
अच्छा, बाहर घर के बाहर, घर में नहीं बैठते थे?
कुर्सी लगा के वो तो।
अच्छा अच्छा, इस तरह बैठते थे कि उनके मस्तूरात ने आपकी बात सुनी हुआ, ऐसा होता था? होता था। माशाल्लाह, बड़ी बात हो गई। और किसी देहात में ऐसे कितने देहात थे जहाँ अजान नमाज नहीं हो रही थी इस पूरे सफर में? अब आपसे मैं क्या पूछूँ, आपने तो 8 ही देहात आपने तो किए हैं, 18 में से 8 देहात आपने किए, और वो भी आप कह रहे हैं कि आबादी थे। तो कोई ऐसा देहात था जहाँ अजान नमाज नहीं हुई हो?
जगह तो थी लेकिन वो लोग खुद अकेले के नमाज।
अच्छा, अजान देखिए वहाँ इबादत खाना था या ऐसे ही मुसलमान? इबादत खाना था। तो आपने वहाँ कोई मेहनत की, कोई इबादत खाना आबाद हो जाए उसकी? क्या
समझा जाए?
आप अमली तौर पर उनको लाने की मेहनत किए थे?
जी।
क्या मेहनत हुई?
इबादत खाने को हमको आबाद करने सबको साथ में तालीम का अमल का मशवरा।
तो आपने उनको तरगीब दी? तरगीब, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। एक जमात ने कारदारी सुनाई कि हमने इनको तरगीब दी, और तरगीब देने के बाद हम लोग अमली तौर पर नमाज के मौके पर उनके पास गए और उनको हाथों हाथ लेकर आ गए। तो एक वक्त में, 2 वक्त, 3 वक्त, तो माशाल्लाह 2 दिन वो वहाँ ठहरे, इतने में वो आते हो गए। और फिर उन्होंने उन्हीं में से किसी को इमाम बना दिया, मुअज्जिन बना दिया, एक काम की शक्ल बन गई। तो मैं ये आपसे ही पूछ रहा था कि आपने ऐसी कोई तब्दील इख्तियार की थी? अच्छा, आपको रवानगी के बाद में ये बातें समझ गई थी?
अच्छा समझाई भी थी, फिर आपने ऐसा नहीं किया, भूल गए थे। आपके नुसरत में कोई आए थे? अच्छा, तो उन्होंने लुकमा दिया था, ये रहबरी की थी कि ऐसा भी कर लो? अच्छा, वो भी किया था फिर भी भूल गए। भाई कभी कोई अमीर साहब भूल जाए, मैंने तो साथ ही याद दिला दे कि अमीर साहब ऐसा अपनों को हिदायत मिली थी, ऐसी हिदायत मिली थी, ऐसी हिदायत मिली थी। देखो ये इसलिए कि आप माशाल्लाह, ये आप खाली जमात में नहीं गए थे, आपका ये बहुत बड़ा खुरूज था, बड़ी कुर्बानी थी और आपकी ये बहुत बड़ी बात थी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे इस खुरूज से हमारा खुरूज वसूल हो जाना चाहिए, बार बार ऐसा मौका नहीं आता। तो अल्लाह करे कि हमारे ज़रिए से ये कोई अच्छी शक्ल बन जाएगी। सही है, गलत यूँ ही बस गुजर कर आ जाने के उसका भी अजर अल्लाह देंगे, इसका इनकार नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ें वजूद में आ जाती तो ये पायदार और मजबूत हो जाती। बोल, हो जाती नहीं हो जाती? शेख ज़करिया रहमतुल्लाह ने लिखा, क्या लिखा, हमारे गुजर फरमाते थे कि कोशिश करो कि हमारे हर देहात में अजान नमाज शुरू हो जाए। क्या शुरू हो जाए, बोलो? अजान नमाज। फिर वो क्या फरमाते थे पता है? उन्होंने फरमाया कि जब अजान, हज़रत शेख ने भी फ़ज़ाइल सदक़ात में लिखा है कि जिन बस्तियों में अजान होती है वो बस्तियाँ शैतान के तसल्लुत से निकल जाती है, शैतान के पकड़ से। अब देखो छोटे छोटे देहात होंगे लेकिन शैतान की उन पर ऐसी मेहनत होती है कि उनके दिल अक्सर फटे हुए होते हैं, अक्सर उनके दिल आपस में जोड़ नहीं होता है, इसको इसके साथ नहीं जानते, इसको दूसरे के भाई को भी आपस में लड़ाई हुई होती है। आपने देखा ना ऐसे अंदाजा, शहरों में ये चीज़ कम होती है लेकिन देहातों में बहुत ज़्यादा होती है। इनको जमा करने वाली कोई चीज़ नहीं, इनको जमा करने वाली चीज़ दीन है, नमाज है। अगर नमाज शुरू इनकी हो जाए तो इनके जमा होने की एक शक्ल बन जाती है, जमा होने की शक्ल, उस पर मुसलमान जमा हो जाते हैं। और दूसरा, शैतान के तसल्लुत से वो बस्ती निकल जाती है, जब अजान होता है तो उसके कोई ना कोई अच्छा खासी पकड़ उसके कमजोर। और दूसरा, जब आदमी नमाजी हो जाता है तो हज़रत शेख ने फ़ज़ाइल सदक़ात में लिखा कि नमाजी आदमी शैतान पर भारी हो जाता है, नमाजी आदमी शैतान पर भारी हो जाता है। तो वो नमाजी भी हो जाए तो शैतान पर भारी हो जाएगा, तो काम आसान हो जाता है। इसलिए इसकी कोशिश करनी है कि हमारे ज़रिए से इन देहातों में अजान नमाज शुरू हो जाए। सही गलत, आइंदा करोगे इसकी फिक्र? माशाल्लाह आपने जो किया अच्छा किया, लेकिन जो छोटा उस पर आइंदा ख्याल करेंगे। कितना पैदल चले? माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़्यादा से ज़्यादा कितना चले?
10 किलोमीटर।
साथी सब खुश थे? अपना तमशा लेकर गए थे आप? माशाल्लाह बहुत अच्छा। कितनी मरतबा पकाया? बहुत अच्छी बात। आपके दस्तरखान पर कितना खाया होगा? माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अल्लाह तशरीफ़ रखे। भाई सलाम, उनकी दूसरी बात आ जाए। आप ये सुनाएंगे, ये जमात ने जो काम किया उससे आगे आपने क्या क्या काम किया? माइक करीब करो।
नदई में इबादत गाह था लेकिन वहाँ पे कोई जमा
पर
नदई करके देहात दिया था हमको, वहाँ पे इबादत गाह था लेकिन कोई जमात ने कायम नहीं किया था, वहाँ पे अजान नमाज कुछ होती नहीं थी। तो वहाँ पे हम लोग ने कायम किया था, नया कायम किया था, वहाँ उनके साथ अजान नमाज भी पढ़ी थी और मकतब शुरू करने की भी उनको तरगीब दी।
माशाल्लाह, वो तो आपने अपनी मौजूदगी में किया लेकिन वो फिर चला उसकी आदमी
ने हमने पता किया, लेकिन वो अकेले ही नमाज पढ़ रहे थे वो लोग।
क्यों, उसकी वजह क्या थी?
उनसे बात की,
इमाम नहीं था, मुअज्जिन नहीं था, या क्या मसला था?
इमाम तो मतलब उनमें कोई नमाज पढ़ाने वाले तो थे अंदर ही अंदर, लेकिन वो ऐसा था कि वो अलग अलग ही नमाज पढ़ते थे। हम लोग के साथ तो जमात के साथ वो लोग शरीक हो रहे थे सारे, लेकिन वो काम काज की वजह से वो बोल रहे कोई हम जल्दी निकल जाते, कोई अलग निकल जाते थे ऐसा उस वजह से। और फजर से लेके मगरिब तक कोई रहता ही नहीं था घर में ऐसा।
अच्छा अच्छा।
एक आध नमाज पढ़ने की भी उनको तरगीब दी। वापस अभी आने से 2 दिन पहले भी हमारे साथी वापस वहाँ पे गए थे और जाके उनके साथ वापस दोपहर के एक वक्त की नमाज वापस उनको जमा करके पढ़ी थी, वापस उनको तरगीब दी थी ऐसा। लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ है।
चलो खैर, आपने कोशिश की, अल्लाह इसको नतीजा लाएगा। ये वापस से कितना दूर है? आपके वहाँ से वो कितना दूर पड़ता है?
30-35 किलोमीटर।
30-35। आइंदा जब देहात तकसीम हो तो जिस मस्जिद कोई कोई ना कोई मस्जिद जो इसको ले अगर टारगेट बना ले कि भाई हमें साल भर में मेहनत करके यहाँ शुरू करनी है तो अल्लाह कोई ना कोई नतीजा लाएगा। ये इज्तिमाई नमाजें शुरू हो जानी चाहिए सब जगह। हमें बहुत अजीब लगा गुज़िश्ता साल हम लोग सूरत वालों के कारदारी सुन रहे थे, इन्होंने इस तरह की तरतीब शुरू की तो इस साल इन्होंने 104 या 14 जगह पर तरावी पढ़ी है, 104 या 14 जगह पर, और जवान जवान यूनिवर्सिटी एरियों में और देहातों में उन्होंने ये शक्लें कायम कर दी। और उसमें ऐसे 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 मुसलमान मिलते थे कि हमने इतने सालों के बाद नमाज पढ़ी, इतने सालों के बाद जुमा पढ़ी, इतने सालों हम ईद पढ़ी थे उसके बाद से अब तक नहीं पढ़ी। जब नमाज के उनवान पर इनको जमा करते हैं तो वो मिल जाते हैं। अजीब व गरीब ये चीज़ होती है। हम लोग एक जगह पर थे और एक बच्चा आया और कहने लगा कि हमारे स्कूल में जो है ना मुसलमान बच्चे हैं लेकिन हमको पता नहीं है कि कितने बच्चे हैं, और हमारे स्कूल में धार्मिक विधि करना मना है, कोई भी कोई धार्मिक विधि नहीं कर सकते, और यूनिफॉर्म लड़के लड़कियों का एक ही है, एक ही जैसा यूनिफॉर्म। तो हम उनको ढूंढें कैसे कि मुसलमान है कि नहीं, कोई धार्मिक विधि कोई बात भी नहीं कर सकते। अल्लाह पाक ने उस वक्त जो रहबरी की वो ये हम लोगों ने उनको ये कहा कि आप अपनी नमाज पढ़ो वहाँ, अपने सबको नज़र आए इस तरह नमाज पढ़ो। उन्होंने कहा हम धार्मिक विधि कर ही नहीं सकते। तो उनको कहा कैसा नहीं हो सकता कि जो तुम्हारा कैंपस है या जो तुम्हारा जो इहाता है, इहाते को क्या कहते हैं कंपाउंड, उसके बाहर किसी दरख्त के वहाँ छुट्टी में या रिसेस में नमाज पढ़ो, वो तो कर सकते हो। कहा ये कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा चलो हम ये करेंगे। वो दो बच्चे थे, उन्होंने कहा कि हम इहाते के बाहर नमाज पढ़ेंगे। तो वो बात पूरी हो गई। उसके बाद एक साल के बाद फिर इज्तिमा में वो मिले, मौली साहब हमने वो दोनों नमाज शुरू की तो हमको देखकर तीसरा बच्चा आया, चौथा बच्चा आया कि मैं भी मुसलमान हूँ। वो कहने लगे 15 बच्चे आए कि हम मुसलमान हैं। हम आज तक नहीं जानते थे, और बच्ची आई कि हम भी मुसलमान हैं। इस अमल ने इनको हिम्मत दे दी और जमा होने का एक उनवान बन गया। तो ये बड़ी बात होती है कि इस तरह से शक्लें बनना इनको संभलने का जरिया बन जाता है। इसलिए आइंदा जो भी इन देहातों को लें इसकी फिक्र करें कि उन देहातों में हमें इन शक्लों को कायम करना है। ढांचा बनेगा तो ढांचे में रूह डालते हैं, ढांचा ही नहीं है तो रूह कहाँ पड़ेगी। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, पहले ढांचा बनाया, फिर अल्लाह ने रूह डाल दी। हमारे ढांचे तो बने, बनाएंगे इंशाल्लाह जी।
फिर आगे कलवाड़ा गांव गए थे हम लोग, वहाँ पे भी मतलब मस्जिद तो है लेकिन वो गैर मानुस है, वहाँ पे वो लोग जमात को कायम करने नहीं देते थे। तो हमारे साथी वहाँ पर गए थे मस्जिद में, इमाम साहब से बात भी हुई थी, 20-25 मिनट आधा घंटा जैसे इमाम साहब से बात भी हुई वहाँ मस्जिद के, उन्होंने चाय वाय भी पिलाई थी ऐसा। लेकिन फिर वो बोले कि तुम यहाँ पे कायम नहीं कर सकते, बोले यहाँ पे जमातों का कायम नहीं होता है ऐसा। पहले गाँव में भी कायम नहीं करने देते थे, उसके बाद में हम लोग वहाँ पे बाहर गाँव में नहर थी वहाँ पे हम लोग ने कायम किया था और नमाज पढ़ने वहीं।
कितने दूर वो मस्जिद से, कितने दूर बस्ती से, कितना दूर था?
बस्ती में ही था, मतलब मस्जिद से आधा किलोमीटर भी नहीं होगा शायद, मतलब
बहुत अच्छी बात।
तो वहाँ नहर पे कायम किया था हमने और नमाजें सारी मस्जिद में पढ़ी,
बड़ी बात हो गई।
तहज्जुद भी पढ़ने मस्जिद में ही गए थे साथ,
माशाल्लाह माशाल्लाह।
और वहीं पे कायम किया टेंट मेरा, 24 घंटे वहाँ पर कायम किया,
वाह वाह माशाल्लाह।
और बस्ती में मुलाकातें भी हुई, सब जगह पे इस्तेमा की दावतें भी हुई और मुतवल्ली साहब से भी मुलाकात हुई।
कायम का कायम कैसा लग रहा था भाई?
सब सही है, थे साथी,
अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। अब तो दुनिया में टेंट में रहना एक फैशन बन गया है। हाँ, दुनिया में सब जगह लोग टेंट डाल कर रहते हैं। हाँ, सब जगह आप देखो टेंट डालकर रहते हैं, तो स्पेशल टेंट बिकने लगे और टेंट की एडवर्टाइज होने लगी और टेंट में दुकानें चलाते हैं। हमारे मौली हसन सुनाते थे कि एक आदमी को मैंने पूछा तुम टेंट क्यों डालते हो, पक्की दुकान क्यों नहीं बनाते, टेंट में ज्यादा धंधा होता है। वैसा सुना रहा था, टेंट में ज्यादा एक 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 नॉवेल्टी हो जाती है, धंधा ज्यादा होता है जी।
फिर वहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे वही कलवाड़ा गांव के आगे कलवाड़ा 4 रास्ता है।
आप ये इमाम साहब ने जो आपको कहा कि यहाँ जमात नहीं ठहरती, तो आपने कोई हिला नहीं किया ऐसा कि कोई बात नहीं इमाम साहब हम चले जाएंगे, लेकिन अब तो आ ही गए हैं तो अभी हम नमाज तो पढ़ लें, फिर जोहर की पढ़ लें, फिर असर की पढ़ लें, होते होते कुछ ऐसी शक्ल नहीं बनी कोई ऐसी?
वहाँ पे बात की थी लेकिन फिर बाद में उन्होंने मुतवल्ली साहब को फोन किया था, मुतवल्ली साहब थोड़ा गुस्सा होकर बोले आप चले ही जाओ।
आप मुतवल्ली से मिले नहीं थे?
मिले थे,
हदिया दिया था कुछ?
फोन पे बात हुई थी, बाद में फिर उनकी मुलाकात, मतलब उस टाइम बस्ती में थे नहीं, फिर बाद में हम लोग तो वहाँ पे कायम करने नहर पे गए थे, उसके बाद फिर उनको मिलने भी गए लेकिन वो मिलने आए नहीं हमको घर से बाहर।
आप उनके घर? अच्छा, हदिया भेज देते किसी के साथ कुछ? हदिया दिया था? ये मोहब्बत को बढ़ाने का अमल है। हुजूर ने फरमाया हदिया दो, उससे क्या होती है मोहब्बत, तहादु तहब्बु, हदियों से मोहब्बत बढ़ती है। तो वो हमारे मुखालिफ है, हम हुजूर वाला अमल करेंगे तो उसमें अल्लाह पाक ने जो तासीर रखी है वो जाहिर होगी। अल्लाह दिलों को पलटा खिलाते हैं, उससे मोहब्बतें बढ़ती है। इमाम साहब को हदिया दे देते, मुतवल्ली को कुछ हदिया पेश कर देते, तो उससे अल्लाह मोहब्बत पैदा करते हैं, है ना। कोशिश करनी चाहिए कि कुछ चीज़ पेश करनी चाहिए। चले और
उससे आगे डेढ़ किलोमीटर पर कलवाड़ा चार रास्ता था, वो मतलब गांव तो एक ही था लेकिन डेढ़ किलोमीटर आगे वहाँ पे भी थोड़ी मुसलमानों के घर थे, नौ घर जैसे थे वहाँ पर भी, तो वहाँ पे भी कायम नहीं होता था पहले। तो वहाँ पे हम लोग ने साथियों से मुलाकात करके बातचीत की, तो वहाँ के जो मकामी थे उन्होंने फिर हम लोग को कायम के लिए एक दुकान में जगह करके दी थी ऐसा। तो वहाँ पे भी हमने नया कायम किया।
आपके पास तो टेंट था, आपको दुकान कायम की क्या जरूरत,
मतलब वो टेंट लगाने के लिए वहाँ पे ओपन में वो लोग ने मना कर दिया ऐसा, कि यहाँ पे कोई होटल पे ऐसा कायम नहीं कर सकते ऐसा।
क्यों
उन लोगों ने मना कर
दिया? कोई ऐसे हालात थे?
नहीं, बस्ती वालों ने मना कर दिया था, बोले तुम हमारे लिए मुश्किलें मत बढ़ाओ।
अच्छा, ठीक।
तो फिर बाद में दूसरे एक जो साथी थे उनसे भी मुलाकात हुई, तो फिर बाद में उन्होंने दुकान में एक चालू तो वहाँ पे कायम करवाया था हमारा जमात का, तो वहाँ से भी हमने कायम किया।
चलो खैर, इस बस्ती के कोई हालात हों, बाकी कोशिश इसके करनी चाहिए कि किसी के घर में, किसी के इबादत खाने में या किसी और जगह पर कायम करने से परहेज करना चाहिए। किसी के घर में भी कायम करने से या किसी और मसलक के इबादत खानों में कायम करने से परहेज करना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने परहेज करने को कहा, रहते घर में परहेज करना चाहिए। फिर शैतान सबके साथ लगाए, खुदा ना करे कोई बात पेश आ गई तो जमात का काम बदनाम हो जाएगा। दूसरी बात यह होती है कि देखो, हम किसी के मखसूस जगह पर कायम करेंगे तो अक्सर देहातों में ऐसा होता है कि आपस में अनबन होती है, तो जिनकी अनबन होगी वो उन कायम गाहों पर नहीं आएंगे, ना नमाज पढ़ने आएंगे ना हमसे मिलने आएंगे। अगर हम कॉमन जगह पर कायम करेंगे तो सबको हम जोड़ सकेंगे, सब हमसे जुड़ सकेंगे। बस हम इस अभी जोन में हम लोग चल रहे थे, तो उस जोन में भी हमको किसी ने कारदारी सुनाई कि हमने किसी के घर में कायम किया लेकिन गांव नहीं जोड़ा। भाई क्यों? तो उनमें आपस में अनबन थी। तो फौरन उनसे कहा, भाई आपको तो पहले ही कहा था कि ऐसी जगह पर ना कायम करें कि किसी का घर हो, किसी के होटल वगैरह पर, वहाँ बहुत सारे लोग जमा नहीं हो पाएंगे, आप कॉमन जगहों पर कायम करें। इसलिए हमारी हर जमात को ये बात कहते हैं, टेंट ज़रूर लेकर जाएं ताकि हमारे कयाम आसान हो जाए। दूसरी बात, हम किसी गांव में गए तो हम बस्ती वालों से ये पूछें कि हम यहाँ कयाम करें, उसके बजाय कोई कॉमन जगह देखकर हमने कयाम कर लिया तो वो क्या करेंगे, अरे भाई ये तुमने क्यों कयाम किया, ये तो गलत हो जाएगा, हमारे आपस में इंतशार हो जाएगा, आप यहाँ आ जाओ। अच्छा चलो, आइंदा ख्याल करेंगे, अब तो कयाम कर ही लिया है, आइंदा ख्याल कर, अब तो कयाम कर ही लिया, ये सब निज़ाम बन गया है, तो उसमें कुछ ना कुछ बात बन जाती है। समझ रहे नहीं समझ रहे? माशाल्लाह उन्होंने हमदर्दी में अपना को कहा कि हमारे घर आ जाओ, लेकिन हम इसके नुकसान को समझें कि भाई अगर हमने वहाँ कायम किया तो जिनके वहाँ उनके साथ अनबन हुई होगी वो कभी भी हमारे पास नहीं आएंगे। तो हमें ऐसी शक्लें अख्तियार करनी है जिसमें सब लोग आ सकें। भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आप तो टेंट लेकर भी गए थे, इसका ख्याल आइंदा करें, है ना। चलो और
फिर आगे अटकम गाचीगढ़ की मस्जिद थी, वहाँ पे जमात को कायम करने नहीं देते थे, तो हम लोग की जमात वहाँ पे गई थी
सामान्य,
लेकिन फिर इमाम साहब ने वहाँ पे भी हमको मना कर दिया है सर, तो बोले मुतवल्ली साहब गुस्सा होते हैं ऐसा सब करके। तो फिर वो लोगों ने आके जुमा मस्जिद थी वहाँ पे करने के लिए बोला हमको कयाम।
अच्छा अच्छा अच्छा।
लेकिन हम लोग फिर डायरेक्ट मस्जिद तो नहीं गए, वो गाचीगढ़ की मस्जिद को लग के एक नहर थी, वहाँ पे हम लोग सामान रख के सब साथी जमा हो गए थे वहाँ पर टेंट लेके कयाम करने के लिए। लेकिन फिर वापस वो लोग वहाँ पर भी आए तो बोले यहाँ पे कयाम मत ही करो, आपकी जुमा मस्जिद चले जाओ। असल में वहाँ पे खाली गश्त होता था अपना, इसलिए वो कयाम के लिए जमात हमारी गई थी वहाँ पर। और तो फिर वहाँ पे लेकिन नहर पे भी उन्होंने कयाम नहीं करने दिया ऐसा, तो फिर हम लोग जुमा मस्जिद।
आप जब उस जगह पर पहुंचे आपकी कितनी देर बाद वो लोग आए?
हम लोग सामान लेके अंदर गए और इमाम साहब आ ही गए।
नहीं, वहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ, जो नहर की जगह पर आप गए ना पहुंचे, तो नहर की जगह पहुंचने के बाद कितनी देर में? 5-7 मिनट। अच्छा, बहरहाल एक इसमें गुजारिश है थी कि हम जाते ही टेंट खोल दें, तो वो जब आएंगे भाई अब तो टेंट लग गया, अब आइंदा इंशाल्लाह देख लेंगे, बाकी अब तो टेंट लग गया। लेकिन अब अगर उसमें हमने ताखिर की तो फिर वो बात हाथ से निकल जाती है। भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हम पहुंचे भाई वो मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह एक बात फरमाते थे, क्या कहते थे कि हम त्रिकोण में नहीं बनेंगे। इसका क्या मतलब? वो एक अरब ने उनको पूछा कि ये तुम काम की शक्लें कैसे बनते थे, हमारे में कोई त्रिकोणीय नहीं होता, हम ये हिदायत देते हैं। इसका क्या मतलब? अगर हमने मस्जिद में कयाम किया और हमको आकर वो कहेंगे अरे भाई क्यों मस्जिद में तुम ठहरे हो, निकलो मस्जिद से, तो हम कहेंगे अच्छा हम सैन में चले जाते हैं, मस्जिद से सैन में चले जाएंगे। हम यूँ नहीं कहेंगे क्यों, वो त्रिकोणीय होता है, कहीं ना कहीं चुभता है, हम कहीं चुभेंगे नहीं, हम निकल जाएंगे सैन में। अच्छा भाई सैन में आ गए, फिर वो कहें अरे भाई यहाँ क्यों ठहरे हो, चलो निकलो यहाँ से। कोशिश करेंगे, कोई समझ जाए नहीं समझे, अच्छा हम मस्जिद के बाहर चले जाते हैं, तो मस्जिद के बाहर निकल गए, हम चुभेंगे नहीं। अच्छा फिर वहाँ अरे भैया क्यों, अच्छा तो मस्जिद से थोड़ी दूर चले जाएंगे, कोई बात नहीं। कहीं यूं करके हम जगह नहीं छोड़ेंगे, लेकिन किसी को चुभेंगे भी नहीं, तो अपनी तदबीर पूरी करेंगे। फिर वो कहने लगे कि आप लोगों को अगर निकालेंगे तो आप मस्जिद से निकालेंगे कि भाई निकलो मस्जिद से, तो आप यूँ पूछेंगे क्यों, तो क्यों में सब पूरा हो जाएगा, क्यों में मसले शुरू हो जाएंगे, हम क्यों करने नहीं देते, त्रिकोण ये बनते नहीं। अपने कोशिश करने की चांस देने से पहले अपने चांस ले लिया कि भाई अच्छा चलो हम यहाँ डाल देते हैं, तो उसकी तदबीर के हम मुकल्लफ हैं। किसके मुकल्लफ हैं बोलो? हमें हुक्म ये दिया कि तदबीर अच्छे से अच्छी अख्तियार करो। ला अक्ल तद्दबीर, अरे अबू धर हुस्ने तदबीर से ज़्यादा कोई अक्लमंदी नहीं है। माशाल्लाह आपने तो बड़ी हिम्मत की, दो दो तीन तीन देहात ऐसे गए कि जिन देहातों में जाने नहीं देते थे, अल्लाह बहुत मुबारक फरमाए। और
फिर वही अजगम में जुमा मस्जिद में कायम करके फिर वहाँ पे वो मस्जिद में काम करने गए थे, फिर मुतवल्ली साहब की खुसूसी मुलाकात के लिए गए थे, उनको हदिया भी दिया, फिर उनके साथ बातचीत भी हुई आधा घंटा जैसे मुतवल्ली साहब ने फिर बात की
माशाल्लाह।
फिर बाद में उनको हमारी जो जमातों की और पिछली चली हुई जोन की जमातों की कारगुजारी सुनाई उनको
माशाल्लाह,
तो बोले आपकी जमात अच्छी काम करती है। फिर बाद में बोले चाय वाय बना देते हैं, आपको छोड़ने भी आते हैं हम लोग
माशाल्लाह। देखो कितना फर्क हो गया, जब मस्जिद में सीधे गए थे इमाम साहब ने जब फोन किया तो गुस्से हो गए थे, यही हुआ ना, गुस्से हो गए थे, और जब मिलने गए और हदिया भी पेश किया तो क्या किया, आधा घंटा बात भी सुनी और चाय भी पिलाई। तो ये पहली मुलाकात चार सर, अगर जमा दो दिन तक इस तरह उनके साथ मामला करे तो बोला माहौल बनेगा नहीं बनेगा। ये सुन देख आपने सुना नहीं सुना कि जब पहली मरतबा गए इमाम साहब ने फोन किया तो क्या हो गए थे, और दो दिन की मेहनत में कितना फर्क पड़ गया ये शक्ल बनाने के लिए। अल्लाह जज़ाए खैर दे।
जी पहले दो दिन पहले साथी वापस खुसूसी मुलाकात में मुतवल्ली साहब की गए थे इस्तेमा की दावत देने के लिए, तो अभी वो बोले इंशाल्लाह मैं पहुंचूंगा।
वाह वाह लो जी माशाल्लाह, उससे आगे का काम हो गया। तब और ख्याल कर लो, अल्लाह करे वो आ ही जाए, और आ जाए तो जरा इनको हाथों हाथ ले भी लेना, इकराम वगैरह भी उनका करो, ठीक है। इस तरह कितने देहातों में अपना काम किया?
15 देहात दिए थे उनको, उसमें से 5 के अंदर मस्जिद थी और 5 मकतब और इबादत गाह वाले थे, और बाकी 8 जो थे वहाँ पे कुछ नहीं था, ऐसे बाहर ही हम लोगों ने कायम किया है।
सब जगह टेंट डाला था
आपने? अक्सर जगह पे टेंट डाला था।
माशाल्लाह बहुत अच्छी। हमारा टेंट डालना भी एक बहुत बड़ा तर्जुमा होता है, बस समझ में, कोई खास लिबास पहनकर लोग जाए तो अपने फौरन पूछेंगे अरे भाई ये कौन लोग हैं, ये ड्रेस कौन सा पहना है, पर नॉर्मल कपड़े पहनकर जाएंगे तो कोई पूछेगा? अरे बोलो कोई पूछेगा भाई, पर कोई खास यूनिफॉर्म पहनकर जाएंगे तो बोलो पूछेगा? तो आमतौर से अभी इस तरह के मोहल्लों में और गांव में टेंट डालने का रिवाज नहीं है। हमारा टेंट पड़ती लोग पूछेंगे अरे भाई कौन लोग हैं, तो आधा हमारा तर्जुमा हो जाता है अरे भाई ये तबलीग वाले हैं, ये नकलो हरकत कर रहे हैं, ये माशाल्लाह इस तरह निकले हुए हैं, तो बहुत सारा कहे बगैर ही हमारी एडवर्टाइज हो जाती है, जो बहुत सौके मुतवज्जो होने का जरिया। बहुत सारे ऐसे मिलने आते हैं, बहुत सारे इसको इस तरह मिलने आते हैं। अभी हम लोग जोनों में कारगरी सुन रहे थे गुज़िश्ता राउंड की, तो वो एक जमात का कारगरी सुनाई कि हम लोग पैदल चल रहे थे तो हमको कोई बिरादराने वतन में से लोग आए कि तुम लोग पैगंबर हो ऐसा पूछने के लिए आए, तो हमने कहा कि ना भाई, कि क्यों आप ऐसा पूछते हो, कि तुम तो पैगंबरों की तरह लगते हो। तो उन्होंने कहा कि हम पैगंबर तो नहीं है लेकिन पैगंबर का काम करने वाले लोग हैं, ये पैदल चलने का असर। अभी इसी जोन में अभी हम लोग मुझे समझ जाते हैं अब्दुल सत्तर भाई, वो ऐसा कह रहे थे कि तुम पैगंबर लोग हो, पैगंबर वहाँ का ना पैगंबर तो नहीं है, क्यों कहा तो पैगंबरों की तरह लिखते हो, तो उन्होंने काम पैगंबर नहीं लेकिन पैगंबर का काम लेकर फिर रहे। तो हमारा चलना खामोश कितनों पर असर डालता है हमें पता भी नहीं चलता, बस समझ में, तो टेंट डालना एक असर डालता है। बहुत अच्छी बात, तो कितना पैदल चले आप? इन देहातों में कहीं अजान नमाज शुरू हुई आपके जरिए से, इज्तिमाई अजान नमाज शुरू हुई?
एक जगह पे अभी ये कुंडलाव जो था वहाँ पे मतलब एक ही वक्त की नमाज होती थी, असर के वो इमाम साहब मकतब पढ़ा रहे थे तो उस टाइम पे होती थी, बाकी फिर नहीं होती। तो अभी वहाँ पे वो लोग फजर और ईशा भी चालू की,
माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो कुछ तो शुरू हो गए।
और वहाँ पे वो लोग
ये बलसाड़ जोन में, भाई बलसाड़ वाले इसको फिक्र मिले, आएंगे जब जोन बेहद तकसीम हो ना तो उसमें आगे की इसकी मेहनत हो जाए, बराबर है, जमा जाती है माशाल्लाह। चलो बहुत अच्छा,
लोग वहाँ पे तालीम भी शुरू की है उन्होंने, मशवरा भी शुरू किया है,
माशाल्लाह,
रोजाना की मुलाकात,
चलो जितना हो रहा है बहुत अच्छी बात, उससे आगे की मेहनत इस देहातों में हो जाए। कितना पैदल चले?
पूरा टोटल 111 किलोमीटर।
ओहो हो हो, वो जमात उसी जोन में चले आप, तो वो तो 75 चले और आप 111, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। तो ज्यादा से ज्यादा कितना चले?
15।
वाह भाई वाह, कितने बजे निकले थे? फजर पढ़कर
7:30 बजे निकले थे, 11 बजे
पहुंचे। माशाल्लाह, अल्लाह बहुत मुबारक फरमावे, बड़ी बात हो गई माशाल्लाह। साथी सब खुश रहे? क्या साथियों की कारगुजारी कैसी रही? आपके साथ जो साथी चले उनका तासुर क्या रहा? सब खुश थे?
सब खुश ही।
पहली मर्तबा कोई चलने वाला है इसमें?
नहीं, चाचा।
कौन चाचा? आप भी पैदल चले? 15 किलोमीटर चले थे आप भी? 75 साल की उम्र?
8 किलोमीटर जितना चले थे।
अच्छी बात। आप पहले उमूमी जमातों में गए हो? जमात में ये पहली बार जमात में गए और वो भी पैदल चले? वाह भाई लो, इसमें कोई ऐसा है आपकी जमात में जो पहले जोन में न चला हो, पहली बार चला हो ऐसा? कौन? हाफिज साहब खड़े होते हैं। आप पहले दूसरी जमातों में गए हो? आप पहले दूसरी जमातों में चले और जोन में चले, आपको क्या फर्क लगा, क्या क्या फायदा हुआ? आप पहले दूसरी जमातों में गए हो ना, सवारी की जमातों में, और इस मतलब आप पैदल गए, तो कैसा लगा दोनों में फर्क? अच्छा, जमात में गए ही नहीं? अच्छा, तो तशरीफ, ठीक, मैं समझा कि पहले वक्त लगा हुआ है, 3 दिन गए थे तो वो नहीं बता सकते। चले ठीक है, बहुत अच्छी बात माशाल्लाह, अल्लाह कबूल। ठीक, आपके साथ कितने लोग शरीक हुए होंगे पूरे सफर में?
59 लोगों ने नमाज पढ़ी हमारे साथ
माशाल्लाह।
और मतलब रोला से एक साथी जो थे वो हमारी रहबरी करने के लिए आए थे
माशाल्लाह।
हरिया में 3 साथी ने हमारे साथ।
टोटल कितने लोग शरीक हुए होंगे?
6-7 जन जितने शरीक हुए।
कितनों को कलमा सही करवाया आपने?
13 लोगों को कलमा सही करवाया।
वाह वाह, बड़ी बात हो गई माशाल्लाह।
कुंडलाव में एक मुर्तद साथी भी थे, उनको मस्जिद में लाए, कलमा पढ़ाया, एक वक्त नमाज भी पढ़ाया।
बड़ी बात हो गई। हमारे बुजुर्ग फरमाते थे, मैं इनाम अल हसन साहब की बात सुनाते थे, कि 1000 आदमियों को नयों को इस्लाम में दाखिल करने के मुकाबले में एक इस्लाम वाले को उस पर उसको बाकी रखना ये ज्यादा वजनदार है। देखो आपके आपके नाम अमल में ये खैर वजूद में आ गई, अल्लाह कबूल फरमाए, बड़ी बात होती है। अच्छी बात। ये दूसरे रोहन कितने मजमे लाए वहाँ से?
कल तो 4 ही लोग आए हैं, लेकिन आज 30 लोग आने वाले हैं।
फिक्र कर लो उसकी, हाँ मजबूत, और जितने आ जाए उसके फिक्र करो। अच्छा भाई, दूसरे जमात आ गए, दूसरे रोहन आ जाओ माशाल्लाह।
आपकी
जमात मुकम्मल क्यों नहीं है भाई? कितना अच्छा अच्छा काम हो रहा है, और मुकम्मल होती तो ज्यादा होता। अब 7 आदमियों में 2 खिदमत में हो जाएंगे, 2 खुसूसी मुलाकात में हो जाएंगे, 1 तालीम में बैठेगा, 2 तालीम सुनेंगे, तो होगा क्या फिर भाई? जमात मुकम्मल करनी चाहिए। देखो माशाल्लाह, इतना अच्छा अच्छा काम हो रहा है, इतनी अच्छी कारोबारी है, अगर ज़्यादा साथी होते कि जमात मुकम्मल होती तो अच्छा काम होता। आइंदा बनाओगे इंशाल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल। चलो,
12 जगह
उसमें मस्जिद मदरसे वाली कितने थी?
4 थे, इसके अंदर मस्जिद थी, एक में इबादत खाना।
वहाँ मामूल से जमातें जाती हैं साल भर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो उन्होंने मस्जिद में कायम करके उसमें काम किया। अच्छा अच्छा, चले
7 जगहों पे जो है वो मस्जिद मदरसा नहीं है, ऐसी जगहों पे कायम।
उसमें कायम किसने किया?
एक
आप टेंट लेकर नहीं गए थे?
टेंट लेकर
फिर
की
अच्छा आपने महसूस नहीं की या पड़ी नहीं? क्यों नहीं, जब बीच आबादी वाले में मकान तो बन रहे होंगे। अब टेरेस पर आप ठहरोगे तो नीचे का आदमी टेरेस पर आप ठहरे हो कैसे पता चलेगा? आपकी जमात वहाँ ठहरी हुई है कैसे पता चलेगा?
मकतब चलता है आसपास के अंदर
चालियां हैं वो नमाज़ लगे बंदे आप कुछ ठिया ठिकाना ढूंढ लेते। कोई ना कोई ऐसी कोई जगह है ही नहीं दुनिया में कि जहाँ ठहरने की जगह ना मिले यार। आपने तो जहाज में लोग नमाज पढ़ते हैं, जाकर ट्रेनों में पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? आप ढूंढ लेते कोई ना कोई। आप टेरेस पर आपकी जमा ठहरी है, जमीन पर चलने वालों को क्या पता कि टेरेस पर क्या हो रहा है? पता है आप जमीन पर ठहरते वहाँ अपना टेंट लगाते तो टेंट लगाना ही काम होता। फिर उसके बाद आपकी तालीम के हल्के लोग देखते, आपकी नमाज लोग देखते, आपकी मुलाकातें लोग देखते, आपका खाना पकाना लोग देखते, ये बहुत बड़ा असर डालता है। आपने रवानगी के बाद में सुना था टेंट में टाइम करियो? सुना था, फिर भी आपने इसको नहीं सोचा। और आपको ये पता है किसी के घरों पर परहेज कैम से हमारे बुजुर्ग परहेज करने को कहते हैं, आइंदा इसका ख्याल करेंगे? आइंदा ख्याल करो कि हम अपना टेंट डालकर ही ठहरें। क्या डालकर बोलो? इसमें बहुत बड़ा नफा होता है, बहुत जबरदस्त। पैदल चलना और टेंट डालना, पैदल चलना और टेंट डालना, ये बड़ा जबरदस्त तर्जमा होता है। पड़ोस के मुल्क की एक जमात मिली और कहने लगे कि हम यूरोप में पैदल चल रहे थे तो एक मकामी गोरी औरत थी, वो गाड़ी लेकर जा रही थी, दो बहनें थी और कोई थी, तो वो गाड़ी खड़ी कर दी। क्यों पैदल चलते हो? कहा हम तो बस इस तरह हमारे इसलिए। कहा हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। कहा नहीं हम तो पैदल ही निकले हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप नबी हो? ऐसा पूछा। क्यों? कहा हमने तो ऐसा पढ़ा है, ऐसा काम तो नबी करते हैं, आप लोग अंबिया हो? उन्होंने कहा हम अंबिया नहीं है। तो फिर हम नबी का काम लेकर फिर रहे हैं। तो हमारा चलना ऐसा जबरदस्त काम करता है, जबरदस्त काम करता है, हमें नहीं पता होता कि क्या क्या काम करता है। इसलिए ये इसको मामूली ना समझें, हमारी नमाज पढ़ने को और हमारे टेंट के कयाम को, हमारा खाना पकाने को, हम इसको मामूली चीज़ ना समझें। हम इसको मामूली समझते हैं लेकिन लोगों के लिए बड़ी चीज़ अल्लाह ने उसमें रखी है, असर डालते हैं अल्लाह पर। फतेह मक्का जब हुआ फतेह मक्का तो साहबा ने इज्तिमाई जो इबादत की नमाज की, इसने बहुत सारे मजमे के दिल को पलटा खिला दिया। एक अमल है, एक अमल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कोई अमल नहीं किया, मार धाड़ किसी की नहीं हुई। लोगों ने कहा कि आज तो गोश्त कटेगा। कहा नहीं, आज तो रहम का दिन है। तो उन्होंने जब नमाज पढ़ी इसको काफिरों ने, मक्के के कुफर ने देखा अपने घरों में से, तो इनके दिलों पर इसका असर हुआ और बहुत सारे लोग इनकी नामाल को देख कर मुसलमान हुए। तो ये हमारे अमल को हम हल्का समझते हैं कि इसमें क्या होता है ना, ये बहुत बड़ा। अब्दुल्लाह इब्न उबै जो मुनाफिकों का सरदार था, उसको जब दफन करने की बात आई तो उनका बेटा अब्दुल्ला आया और कहा कि मेरे अब्बा की नमाज जनाजा आप पढ़िए और हमारे अब्बा के लिए आप कुर्ता दीजिए। तो हमारे नबी अलैहि सलाम ने ये अमल किया, किसी को कुछ नहीं, ये अमल लोगों ने देखा तो उस जनाजे में सब मुनाफिकीन आ गए थे। तो इस अमल को देखकर 1000 मुनाफिकीन मुसलमान हुए हैं, 1000 इस अमल को देखकर। तो अमल देखकर एक बात मुंतकिल होती है, हम इसको हल्का ना समझें, आइंदा ख्याल करेंगे इसको। चलो
जो साथी आए थे उनसे हमने जो है बिठा करके बात की, उनके सामने नाश्ता है वो रखा, बात हुई तो फिर वो थोड़े मालूम से, उसके बाद बात बात से पता चला जो ट्रस्टी हजरा थे थोड़े पहचान वाले, ट्रस्टी हजार से भी जो है मुलाकात हुई। उससे पहले एक दो जमात ने कायम किया था एक, दूसरे दिन फिर उनको वहाँ से जाने के लिए बोला था, हमने जो है वहाँ पे दो दिन कायम किया और एक दिन जो है पूरी बस्ती की दावत भी की। बस्ती से अल्हम्दुलिल्लाह 20-22 जन दावत के अंदर भी आए, सबने खाना। दूसरे दिन फिर जो है उनके जो ट्रस्टी थे उन्होंने हमारी दावत,
वाह भाई वाह, देख लिया भाई आपने,
बस्ती वाले सारे
पहले दिन तो मजे से निकाल दिया और दूसरे दिन कौन दावत कर रहा है? अरे बोलो तो सही भाई, ट्रस्टी तदबीर इख्तियार की, अपनी पहचान को इस्तेमाल किया माशाल्लाह। चलो और
के आगे जो है हम लोग एक जगह सलवाओं के अंदर, वहाँ भी गैर मानुष मस्जिद के लिए मस्जिद में कायम नहीं करने दिया, तो मस्जिद के करीब में जो है हमने एक बड़े से दुकान थी उसके अंदर कायम किया। और वहाँ पे रह करके मस्जिद के अंदर सारी नमाजें पढ़ी, इस्तेमा की सारी दावत दी, आसपास में जितने भी मुलाकातें थी सारी की, और इस्तेमा की भी पूरी दावत
माशाल्लाह माशाल्लाह।
सारी वक्त की नमाजें मस्जिद के
अंदर। आपने पूरे सफर में 100% मुल्कानों की मुलाकात करने की कोशिश की?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर जगह पहला टारगेट यही होता था कि भाई जितने भी मुसलमान हैं सब तक पहुँचा जाए।
उनके मुस्तरात तक भी आवाज़ पहुँची, इस तरह बात करते थे?
जी अल्हम्दुलिल्लाह।
कहीं मुस्तरात का प्रोग्राम किया?
हाँ, चार जगहों पर मुस्तरात में बात।
माशाल्लाह, दूसरी जगह क्यों छोड़ दिया आपने?
मौलाना वो बीआईडीसी का एरिया था, चालियाँ थे, कुछ जगहों पर जो ज़्यादातर जो है वो बैचलर्स रहते थे नौजवान।
बैचलर्स?
वो
गैर शादीशुदा।
और जहाँ पे रहते भी थे तो
हाँ कोई बात नहीं, मतलब जहाँ मस्तूरात थी, मैं उनकी बात पूछ रहा हूँ, जहाँ मुसलमानों की आबादियाँ थी तो वहाँ जहाँ मुसलमान मस्तूरात थी वहाँ मस्तूरात में बात चार जगह पर हुई। दूसरी जगह पर अच्छा, जिन मुसलमानों में ठहरे उनके मर्गों से मिलने जाते थे तो वहाँ बात इस तरह कर दी, मस्तूरात तक बात पहुँचे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। आपके साथ कितने लोग बस्तियों में शरीक हुए? उनमें किसी बस्ती वाले ने कोई तासुर अपना बयान किया कि आने के बाद हमें ये फायदा हुआ कि ये कि ये कि ये कुछ और ऐसी बात?
हाँ, एक साथी तालीम के अंदर बैठे थे, फिर वो तालीम के बाद उन्होंने ऐसा यानी महसूस हुआ कि मेरी नमाज ये सही नहीं, उन्होंने साथ में बैठ करके कुछ जो सूरह फातिहा वो भी सीखी, उसके बाद नमाज भी सीखी।
माशाल्लाह। आपने आगे की इनके फिर जहन साजी की कि देखो आप थोड़ी देर तालीम में आए तो ये हुआ तो इसको सीखना चाहिए?
जी, दूसरे दिन भी उनका जो जॉब का टाइम जान लिया और आने का वक्त,
माशाल्लाह बहुत अच्छी
बात। जो बैंक के मैनेजर साहब थे उनसे भी मुलाकात हुई, वो रास्ते हमारी जमात यानी जा रही थी पैदल तो उन्होंने देखा बैंक में, तो वो जब से बाहर आ गए और नमाज से मिला, बहुत खुश हुए। फिर नमाज का कायम कहाँ है वो सारी चीज़ें पूछी, वहाँ कायम करते भी आए हमारे साथ, दो दिन रुके भी, दो दिन उनकी छुट्टी थी शनिचर इतवार की।
माशाल्लाह।
नमाज का वक्त खत्म होने के बाद भी उनसे दो तीन मरतबा फोन से रब्ता किया।
भाई सुना आपने क्या हुआ, क्या हुआ जरा सुनाओ। पैदल जा रहे थे, बैंक के मैनेजर ने जमात को कहाँ से देखा? अरे भाई बोलो तो सही, अंदर से। तो क्या किया उन्होंने? बाहर आकर मिले, फिर क्या किया? जमात के कयाम की जगह को मालूम किया। बराबर है, अगर यही जमात पैदल के बजाय सवारी चली जाती तो दिखता ये जो हुआ वो होता? ठीक है, ये क्यों हुआ? अरे बोलो भाई, पैदल। अब बैंक का मैनेजर एक बावजन आदमी होता है या बेवजन होता है? अब अगर इतना बावजन आदमी अगर कोई बात समझ ले सुन ले तो फिर उसके बाद वो जितने लोग उसको देखेंगे उन सब पर गैर महसूस तरीके पर असर पड़ेगा। अरबी में कहावत है क्या, बड़ों की बात बातों में बड़ी। बोलो, बड़ों की बात बातों में बड़ी। कलाम उल मुलूक मुलूकुल कलाम, के जो बड़े होते हैं उनकी बात भी बड़ी होती है। अब ये बड़े आदमी को बात समझ में आ जाएगी तो उसकी बात भी बड़ी है, वो चल पड़ेगी। ये उसको असर किसने किया? पैदल चलने। अगर ये ना होता तो ये ज़ाहिरी शक्ल है तो हमें नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ किस पर कितनी असर करती है। आप देख रहे हो, इसलिए नियत करो आइंदा इंशाल्लाह तीन तीन दिन में भी हम पैदल चलेंगे अमूमी जमातों में। कौन सी जमातों में बोलो? हाँ, कोई मुश्किल बात नहीं है, असर डालेगा असर। हमारा पैदल चलना ख़त्म हुआ है, इसको जिंदा करना है। अभी हम लोग वहाँ थे मुल्क के पुरानों में, तो माँ इब्राहिम साहब कहने लगे कि अपनी पैदल जमातों का कसरत हो जानी। दो चीज़ें कह रहे थे, एक पैदल जमातें हमारी बढ़ जाए और दूसरा दुआओं की मकदार बढ़ जाए। हमने एक बुजुर्ग को सुना कि कितना इस्तेहज़ार या अल्लाह, आज की रात 31 दिसंबर थे, वो कहने लगा कि बहुत अल्लाह की नाफरमानी 31 दिसंबर की रात में होती है। होती है कि मैंने कई साल से मामूल बना लिया कि 31 तारीख की रात में 12 बजे मैं अल्लाह के सामने सजदे में हो जाता हूँ और अल्लाह से कहता हूँ कि अल्लाह सब जगह तेरी नाफरमानी हो रही है तो हमारे इस झुकने को कबूल कर ले। वो सुना रहे थे कि 31 दिसंबर की रात में कई सालों से एहतमाम करता हूँ कि पूरी दुनिया एक साथ 12 बजते ही अल्लाह की नाफरमानी करती है, मैं उसी वक्त सजदा करता हूँ और अल्लाह से कहता हूँ कि अल्लाह हमारे इस झुकने को कबूल। कितना इस्तेहज़ार है। तो ये कि दुआओं का एहतमाम और दूसरा पैदल चलना। तो वो क्या, माँ ने भी कहा कि हमारे दुआओं का अहतमाम नहीं होता, दूसरा पैदल जमातों का ताता बांध दें, उसके असरात पड़ेंगे। बांधेंगे इंशाल्लाह। तो मैं से कौन कौन कह रहे हैं हम पैदल चलेंगे? किसमें? महीने के 3 दिन जाएं उसमें, चिल्ले में जाएं उसमें, साल भर पैदल चलना है, अल्लाह को ये जिस्म थका कर दिखाना है, ये जिस्म बहुत थका है अल्लाह की नाफरमानियों में, बहुत फिराया, अब इसको अल्लाह की फरमाबरदारी में फिराना है, अल्लाह की इताअत में फिराओगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह कितना पैदल चले?
80 किलोमीटर।
ओहो हो, माशाल्लाह बड़ी बात है। ज्यादा से ज्यादा कितना चले? माशाल्लाह माशाल्लाह 20 किलोमीटर, भाई बड़ी बात है। कब चले थे?
4 बजे
निकले थे। कब पहुंच गए?
8:30-9
माशाल्लाह। अरे भाई बड़ा जल्दी पहुंच गए, अल्लाह ने आपके लिए जमीन को लपेट दिया, अल्लाह मुबारक करना। बहुत सब साथी खुश रहे, बहुत अच्छी बात। आपकी जमात में कितने साथी थे?
7।
ओहो, बस ये थोड़ी दुख की बात हो गई। आइंदा जमात मुकम्मल करोगे? भाई मुकम्मल इसलिए नहीं हुई थी कि हम लोग नहीं गए थे, तो अब सब तय कर लें कि आइंदा हम लोग जाएंगे। तुम में से कौन कौन नियत करता है कि आइंदा हम जाएंगे? वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी तशरीफ। अच्छा भाई चौथी जमात आ जाए। किसे राम उनके दूसरे की? इस जमात से आगे आपने क्या काम किया ये जरा सुना दें। इस जमात ने जो किया माता माशाल्लाह है, उससे आगे आपने क्या काम किया?
उसके आगे में अहले हदीस के मस्जिद के अंदर माशाल्लाह तालीम शुरू किया और गश्त शुरू किया।
अच्छा, वो कैसे हो गया?
3 दिन हमारी जमात वहाँ पर ठहरी, उसके बाद माशाल्लाह मेहनत हुई।
उससे पहले वहाँ जमातें जाती थी?
ये जोन की जमात गई थी?
नहीं, यूँ साल भर जमात उस मस्जिद में जाती?
साल भर में नहीं जाती।
अच्छा, आपके कयाम में कोई दुश्वारी तो नहीं हुई?
नहीं, कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह।
इसका मतलब कि हमारी कमी रही कि हम वहाँ जमात नहीं भेजते। ये बलसाड़ जोन की है
जी, वहाँ पे।
तब आइंदा इसको मुस्तकिल देख लें कि अल्लाह करे कि वहाँ। अच्छा, हमें कभी मसलक की कहीं कोई बात नहीं करनी। मसलक की हमारी 4 बातें, इनके 4 बातें कहीं नहीं बोलेंगे। वो कौन सी बात? 4 बातें बिल्कुल नहीं करनी। कल रवानगी की बात में सुनाएंगे, 4 बात में वक्त लगाना, 4 बात कम से कम करना, 4 काम बिल्कुल नहीं बोलना। उसमें 4 काम क्या नहीं बोलना बोलो? मसले मसाइल नहीं बोलना, और हालत हजरा को नहीं बोलना, और तीसरा अमराज उम्मत, उम्मत में ये हो रहा है सब वो नहीं बोलना, और सियासियत को नहीं बोलना है ना। तो उसमें मसले मसाइल में हमें इख्तलाफियत को बिल्कुल नहीं बोलना है ना। तो अल्लाह पाक ने ऐसी मेहनत चलाई कि उसमें सारी फिक्र के लोग जमा हो जाते हैं। जब अगर हम इस चीज़ को ज़रा भी छेड़ेंगे तो उसमें फिर मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो आइंदा इस मस्जिदों को ऐसी मस्जिदों में बात अभी 2 जमातों ने सुनाई कि और फिक्र और मकतब फिक्र की भी 2-3 मस्जिदों में माशाल्लाह उन्होंने मौका दिया हमको। तो कहीं भी जाएँ तो हमें और मकतब फिक्र के किसी मसले मसाइल को छेड़ना नहीं है। हमें क्या बोलना है? आखिरत की तैयारी को बोलना है, कबर को बोलना है, कबर के बाद की तैयारी को बोलना है, ये सारी के सारी बातें बोलनी है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो जमात, इसको आइंदा के लिस्ट में ले लो कि यहाँ जमात जा सकती है, और जो जमात जाए उसको जरा समझा कर भी भेजना है। हाँ चलो, और आगे
हर अमल के अंदर साथी वहाँ से जुड़े अल्हम्दुलिल्लाह।
कितने साथी आपके साथ जुड़े?
वहाँ के बयान में तो नमाज के अंदर आते थे 8-10 साथी, सारे बैठ जाते थे।
आपकी इस पूरे सफर में कहीं इतने देहात, ऐसे देहात कितने थे जहाँ जहाँ नमाज नहीं होती?
2-3 जगह पर।
वहाँ कहीं आपने अजान नमाज शुरू करवाई?
अजान नमाज तो शुरू नहीं हुई।
आपने उसकी कोशिश की थी?
जी।
कोशिश क्या की थी?
साथियों को जोड़कर मतलब तालीम के एतबार से, बच्चों की तालीम के एतबार से, अजान नमाज के एतबार से फिक्र दिलाई।
वो तो तरगीब देना हुआ, तरगीब एक दर्जे की कोशिश हुई। फिर आगे हम लोग गुज़िश्ता थे ना जोन में, तो मेहसाणा की जमाने गरदरी सुनाई। क्या सुनाई उन्होंने? ये सुनाई कि हम लोगों ने तरगीब दी, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हमारे पास तो कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ हम पढ़ेंगे। तो कहा हम जहाँ कॉमन जगह पर ठहरे थे, हमने कहा मस्जिद तो बहुत आसान है, फिर कैसे आसान है? तो वो 4 लकड़ियाँ ले आए जंगल में से, काट कर नीचे प्लास्टिक बिछा दिया और वो 4 लकड़ियों पर एक प्लास्टिक लगा दिया। कहीं तुम्हारी मस्जिद हो गई? कहो गई, कहो गई। बोलो आसान है क्या मुश्किल है? अरे बोलो भाई आसान है क्या मुश्किल? प्लास्टिक बिछा दिया, 4 बल्लियाँ गाड़ दी और उस पर एक प्लास्टिक लगा दिया, कहीं मस्जिद हो गई। अरे इमाम साहब तो है नहीं, तो उनमें जिसको जरा समझ बूझ थी उसके ऊपर 2 दिन मेहनत की, 2 सूरतें उसको पक्की कर। भाई फर्ज नमाज में कितनी सूरतें पढ़नी है? सूरह फातिहा के बाद 2 सूरतें, पिछली 2 रकातों में सूरत है ही नहीं, 2 सूरतें पक्की करवा दी। कही हमारे इमाम साहब हो गए, उसको इमाम बनाया अपनी मौजूदगी में, उसी के पीछे जमात ने भी नमाज पढ़ी। तो बस्ती वालों को भरोसा हो गया, कहा ये पक्का इमाम हो गया। तो इमाम हो गया, एक छोकरे को थोड़ा सा बुलाया और अजान सिखा दी, ये हमारा मौजिन हो गया, ये इमाम हो गया, ये हमारी मस्जिद हो गई, अब अपने यही नमाज। तो दो दिन तक उनके सामने नमाज पढ़ी, तो वो नमाज शुरू हो गई। ये तरगीब के बाद तदबीर, तरगीब के बाद, अरे बोलो, तरगीब के बाद मौलाना इलिया साहब फरमाते थे, तुम अपने दीन के लिए ऐसी तदबीरें इख्तियार करो जो जो तुम अपनी दुनिया के लिए करते हो। तो तदबीर इख्तियार करने की होती है, तो आइंदा सब नियत करो कि इंशाल्लाह हमारे घर में जो देहात आएंगे उसमें ऐसे तदबीर इख्तियार करेंगे कि हमारी शक्लें कायम हो जाए, करोगे इंशाल्लाह। चलो बहुत अच्छी बात। और
वहाँ पर जाना हो वापस अगस्त के एतबार से, तालीम की माशाल्लाह तालीम भी शुरू है, अगस्त भी शुरू है, और वहाँ से साथियों ने भी आने का इरादा किया है
माशाल्लाह।
इसके माह के अंदर फोन भी किए थे उनसे, पर इंशाल्लाह तो पहुँच जाएंगे।
बहुत अच्छी बात। कितना पैदल चले?
56 किलोमीटर। अच्छा। यानी ठीए से ठीए 56 किलोमीटर है, और ऐसे एक सब मतलब मुलाकातों के एतबार से 115 किलोमीटर।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है, अल्लाह बहुत मुबारक फरमाए। वहाँ से कितने लोगों को साथ लाया?
फ्रांसिस की चाल से साथियों के 3 दिन की तस्कील में 18 साथी आए।
पहले राउंड में चले, दूसरे राउंड में?
दूसरे राउंड
18 साथी आए वहाँ से। माशाल्लाह
माशाल्लाह, उनका इस्तकबाल
जी, कल इस्तकबाल
वहाँ मतलब वापी वाले हल्कों के अंदर ठहरे हैं, उसमें से 2 साथी माशाल्लाह 4 महीने के लिए जाएंगे।
वाह वाह,
तो 2 साथी चिल्ले वाले
साथ आपके जनाब भी थोड़ा सा इख्तलाफ करेंगे? नहीं करेंगे,
हाँ मुलाकात हुई कल 2 से 3 मतलब मुलाकात।
माशाल्लाह, खाने पीने का भी इनका ख्याल कर लेना, उनको बेचारे नए नए हों, पता ना हो कि क्या करना क्या नहीं करना।
कुछ साथी का वक्त लगा है उसमें।
बहुत अच्छी बात। और
1096 साथियों से मुलाकात।
वाह भाई वाह, माशाल्लाह बड़ी बात हो गई। 1096 साथियों से
413 साथियों को कलमा पढ़ाए
सिखाए
पढ़ाया, 33 साथियों को कलमा सिखाया।
मतलब हमारे वहाँ पढ़ाने का मतलब ये होता है कि हमने
मुलाकात के अंदर जाते थे उसमें तो कलमा पढ़ाते थे।
नहीं तो उसमें हम ये बोलेंगे जुमला, बजाय पढ़ाने के जुमला हम ये बोलेंगे हमने कलमा सिखाया है, इसलिए कोई इस्लाम वाला था वो भूल गया था उसको सिखाया है
जी।
और पढ़ाना उसको कहते हैं जो जो और मसलक में था उसको हमने इस्लाम में दाखिल किया, तो हमारे वहाँ तो ये है नहीं, बराबर है। हम क्या जुमला बोलेंगे बोलो? हमने कलमा सिखाया, वो भूल गए थे तो हमने सिखाया, ये तो बड़ी बात हो गई। कितने लोग टोटल, कितनों को कलमा सिखाया आपने?
37 साथी को कलमा सिखाया।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात हो गई। अब किताबों में आता है कि एक ईमान वाले के पास कोई अमल नहीं, लेकिन अगर कलमा भी है तो ये कलमा उसको जरूर क्या देगा बोलो? जन्नत में ले जाएगा। बड़ी बात हो गई, अल्लाह कबूल फरमाए, बहुत बड़ी बात है।
20 साथियों ने सर कमोबेश उस वक्त लगाया, 2 घंटे 3 घंटे।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह,
जो बैंक वाले साहब थे उसको भी हमारे सर ने 2 दिन लगाए।
देखो माशाल्लाह, देखा भाई, सुना आपने पैदल जमात की बरकत। जिन्होंने बैंक वालों ने जियारत की थी पहले राउंड वालों के, तो उनको जियाफत हुई, और दूसरे राउंड में उन्होंने क्या किया बोलो? 2 दिन लगा दिए। ये काय की बरकत हुई? अरे भाई जरा जोर से बोलो, काय की बरकत हुई? तो चलोगे आप भी? आप में से कौन कौन चलेगा? अल्लाह हजरत को कबूल फरमाए, हिम्मत भाई आ जाओ आगे कराऊ। आप कौन से जोन में चले?
हमारी वापी की जमात थी, दमन जोन के अंदर उमरगाम के अंदर चले। हमारे जमात में 7 साथी थे, 4 साथी
बुजुर्गान दीन। कहाँ तशरीफ ले जाएंगे आप? अगर ज्यादा तकाजा नहीं है तो तशरीफ रखें, अगर ज्यादा इसलिए कि आप तकाजे को दबाओगे इसको क्या कहा जाएगा बोलो? कुर्बानी और सबर बोलो, यही होगा कि आपने क्या किया? अरे जरा जोर से बोलो, क्या किया आपने? अच्छा, सबर वालों के साथ कौन है? तो आप नहीं चाहते कि अल्लाह आपके साथ हो जाए? अच्छा, आप में से कौन कौन चाहता है जरा बताओ कि अल्लाह हमारे साथ हो जाए? तो क्या करना है? तो में से कौन कौन सबर करेगा? क्या मतलब इसका? कब तक बैठोगे? आखिर तक। जब आखिर में मजलिस खत्म होगी फरिश्ता क्या ऐलान करेगा? अरे बोलो क्या ऐलान करेगा? इस साल में उठो, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को कौन कौन बदलवाना चाहता है?
वाह भाई,
तो बैठोगे? सदन कोशिश ये करेगा कि इनको उठा कर ले जाओ ताकि इनके गुनाह ही न बदले। तो इंशाल्लाह आज इसको जीतने नहीं देना, उसको जीतने
नहीं देना। मेरा वक्त लगा था अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर से यही मिला था।
अच्छी बात,
تو 11 جگہوں پہ پچھلے سال الحمدللہ اذان نماز زندہ ہوئی.
واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
اس میں سے الحمدللہ 6 جگہ پہ پچھلے سال تراویح بھی ہوئی
ماشاءاللہ.
اور ایک جگہ وہاں تو انہوں نے گاؤں سے حافظ قرآن بلائے تھے تو ایک جگہ ختم قرآن والی بھی
ماشاءاللہ. بڑی بات ہو گئی. واہ 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 ماشاءاللہ.
اس سال اس میں سے بارش ہوئی, اس کے چلتے لوگ اکثر کمپاؤنڈ میں نماز پڑھتے تھے تو روم کے اندر نمازیں ہونے لگی تھی اور جماعت چھوٹ گئی تھی. تین ہی جگہ ایسی تھی, دو یا تین جگہ جہاں پہ اذان نماز باقی تھی. اس میں ایک چالی ایسی تھی جہاں پہ وہ چالی کے باہر ماشاء اللہ بارش میں بھی ایک ساتھی نے مستقل اذان دی اور روم میں اس نے نماز پڑھی.
واہ بھائی واہ ماشاء اللہ.
تو پھر
اس سال کیا ہوا؟
اس سال الحمد للہ وہ 11 جگہوں پہ بھی شروع ہوا
اور جو ختم ہو گیا تھا وہ دوبارہ زندہ ہو گیا.
جی جی
ماشاء اللہ.
اور پانچ جگہ اور شروع ہو گیا.
واہ بھائی واہ بھائی. آپ بتاؤ کیسے شروع ہوا وہ؟ کیسے محنت کی؟ کیا محنت کی کہ گزشتہ 11 ختم ہو گئی تھی وہ شروع ہوئی, مزید 5 شروع ہو گئے, وہ کیسے ہوا؟
اصل وہ 11 جو تھے وہ بارش کے چلتے ہی رکے تھے کہ وہ کمپنیوں میں اکثر
کمپاؤنڈ بارش کی وجہ سے ان کو عذر ہو گیا.
جی عذر ہو گیا.
آپ نے اس کا حل کیا سمجھایا ان کو؟
پھر کاہلی آ گئی تھی. پھر ہم گئے تو ماشاء اللہ کیونکہ مانوس تھے جانتے بھی تھے تو گئے اور میں نے کہا پھر سے شروع کرنا ہے ہم کو, بیچ میں خیر خبر بھی لیتے رہتے تھے سال بھر
تو آپ نے ان کو پھر
کمپنی میں ان کے بیچ میں دو دن کوئی ترتیب, ان میں سے ایک کو امام بنایا, ان میں سے ایک سے اذان دلوائی.
ماشاء اللہ دیکھو آسان ہو گیا. ہمارے بزرگوں نے جو ہم کو رہبری کی انہوں نے اس طرح کیا تھا. تو کتنی جگہ پر شروع ہوا بولو؟ 5 جگہ پر. نئی 5 جگہ پر اور گزشتہ کی کتنی ہو گئی؟ واہ بھائی واہ. دیکھو انہوں نے کچھ نہیں کیا. کیا کیا؟ جو بزرگوں نے کہا تھا وہ کیا. وہی ہوا ایسا ہی کہا تھا. تو دیکھو کتنی جگہ شروع ہو گیا. تو آپ بھی آپ ایسے ہی کرو گے ماشاء اللہ. بہت اچھی بات.
5 کمپنیوں میں مطلب جہاں بھی قیام کیا 2-2 دن کا کیا.
ایک بات آپ سے پوچھنا ہے, گزشتہ جو آپ نماز شروع کروا کر آئے تھے ان میں سے کسی نے اس سال کوئی اپنا تاثر بیان کیا کہ ہم پہلے نماز اجتماعی نہیں پڑھتے تھے تو کیا تھا اور اب شروع ہوئے تو کیا ہوا؟ کوئی تاثر, کوئی کاروباری ان کی یا ان کمپنی والوں میں سے کسی نے کوئی اور کاروباری سنائی ہو آپ کو, آپ کی جماعت گزشتہ جو کام کر کے آئے تھے؟
ایک کمپنی ہے جس میں نماز سب سے زیادہ بام ہے, مطلب 100% نمازی تھے
ماشاء اللہ.
17 جن تھے, 17 پڑھتے
تھے. واہ بھائی واہ واہ بھائی.
اس میں بند ہو گئی. اس کے اندر مین ماسٹر تھے جو شمسل, وہ کہتے تھے مجھے 2 بار خواب آ چکا کہ تیری ذمہ داری ہے, تیری وجہ سے بندوا تو شروع کرا.
عجیب بات عجیب بات. اللہ ہی رہبری کرتے ہیں بندوں کی. کون رہبری کرتے ہیں بولو؟ اللہ کرتے ہیں.
اور ایک دو کمپنی اس میں غیر مسلم سیٹ سیٹ اکثر ہندوؤں کی کمپنی ہے, مطلب غیر مسلموں کی کمپنی ہے.
جی جی.
اس میں ایک دو کمپنی کے سیٹ کے بھی تاثرات ہے کہ ماشاء اللہ مطلب جماعت آنے سے ہماری برکت ہو رہی ہے.
اچھا اچھا.
15,000 پینٹ بنتی تھی, 75,000 بن رہی ہے.
اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایمانداری زندہ ہوتی ہے تو ایمانداری کے ساتھ ساری چیزیں زندہ ہو جائے گی, امانتداری, دیانتداری, خیانت ختم ہو جائے گی. اچھا.
جو مین آدمی ہے ماسٹر ایوب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سیٹ کے تاثر آتے ہیں اس بارے میں.
اچھا
جی جی
ماشاء اللہ. اور
ایک کمپنی ایسی تھی جس میں دن کا قیام نہیں ملا تو مستقل راتوں میں گئے 2 دن. رات میں اس کمپنی میں قیام کیا, عشاء میں جوڑ کیا, فجر میں جوڑ کیا الحمدللہ. اور 3 کمپنی ایسی تھی جس میں شام میں بند ہو جاتی تھی تو مستقل 2 دن تک عصر مغرب عشاء ظہر عصر مغرب ظہر ظہر عصر مغرب اس طرح کے. اور 5 جگہ الحمدللہ چالی میں بھی قیام کیا
ماشاءاللہ
ماشاءاللہ. 3 جگہ انشاءاللہ مکتب شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم واپسی سے جو پڑھانے والے نہیں ہوتے اس لیے نہیں ہو پایا. ایک بار حافظ صاحب کو بلائے بھی تھے لیکن ان کو جمع نہیں. اب الحمدللہ کہ حافظ صاحب طے ہو گئے تو 3 جگہ مکتب بھی شروع ہو جائے گا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بڑی بات ہو گئی.
309 لوگوں نے نماز پڑھی ہمارے ساتھ الحمدللہ.
واہ واہ ماشاءاللہ.
606 لوگوں کا
اکرام. تو آپ یہ سب کو کیسے لاتے تھے نماز میں؟ 309 کو آپ کیسے لائے؟
ان کی کمپنی میں ہی رکے ہوئے تھے.
ٹھیک ہے وہ تو کمپنی میں تو ہے لیکن آئے کیسے آپ کے ساتھ وہ نماز پڑھنا ہے؟ آپ چپ چاپ نماز پڑھ لیتے تھے یا نماز کے لیے ان کو بلانے جاتے تھے؟ کیا کرتے تھے بھائی؟
اصل ان کی دعوت کرتے تھے. 606 لوگوں کا اکرام ہوا.
ماشاء اللہ واہ بھائی واہ. دیکھو یہ گڑ کی بات ہو گئی. ہم نے کتابوں میں یوں پڑھا ہے ایک آدمی احسان کا غلام ہو جاتا ہے. کس کا بولو؟ اسی لیے جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے احسان اپنے اوپر نہیں چڑھاتے. کس کے؟ شریف لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے احسان نہیں چڑھاتے ہاں, کیونکہ اس کی غلامی زندگی بھر کرنی پڑے گی. کتابوں میں آتا ہے المرء عبد الاحسان, آدمی احسان کا غلام ہو جاتا ہے. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے بڑے مجمع کو کھلا کر متوجہ کیا اور جب مدینہ منورہ گئے تو جو پہلا خطبہ دیا اس میں کیا کہا؟ لوگوں کو کھلاؤ اطعم الطعام, یہ پیغام دیا تھا. تو جو جماعتیں کھلاتی ہے اس کا کام بھی بڑا ہوتا ہے. جو جماعتیں کھلاتی ہے بولو ان کا کام بھی. اب انہوں نے 600 آدمیوں کو اپنی دسترخوان پر بلایا, 600 آدمی انہوں نے ان کے دسترخوان پر کھائے.
اس کی بھی ترتیب آسان ہے, اس میں نہیں کہ زیادہ خرچہ ہے.
جی جی جی,
ایسا خیال آ جاتا ہے.
اچھا تو پھر
اتنے ساروں کیسے کھلایا؟
آپ کی جماعت کا کتنا خرچہ ہوا اس پورے چلے؟
2700 روپے خرچہ
ہوا. لو بھائی جی, کوئی 2700 روپے کوئی بات ہے یار؟ ارے بھائی سچ بتاؤ, گھر میں آدمی کے 2700 سے زیادہ ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں؟ اگر کھانے کے ساتھ گنے تو یہ تو گھر سے بھی کم ہو گئے, اور 600 آدمیوں نے کھانا کھایا تو یہ برکت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بولو؟ برکت ہوتی ہے.
جتنا کو اکرام ہوئے دو دو بار, مطلب اکثر کا دو دو بار ہے.
ماشاءاللہ یہ بڑی بات ہوتی ہے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کھانا کھلانا. ہم اپنی جماعتوں کو ترغیب دیں کہ جن بستیوں میں ہم جائیں اس بستیوں میں لوگوں کو کھلائیں. اور ایک تو کھلانا یہ ہے کہ بھائی چلو ہم کھانا بنا لیں, کوئی آ جائے گا تو اس کو بلا لیں گے. اور ایک یہ کہ 7 آدمی ہے اور 15 کا کھانا بنانا ہے, اور 5 کو 8 کو ڈھونڈ کر لانا ہے. تو دونوں کی بات میں فرق ہوگا نہیں ہوگا؟ ایک تو یہ کہ ہم نے 7 آدمیوں کا پکایا اور کوئی آئے گا تو کھلا لیں گے. اور ایک نہیں بھائی, ہم 7 کے بجائے کتنا کا بنائیں؟ 15 کا. اب 8 آدمی ڈھونڈنے ہیں تو سچ بتاؤ فکریں بدل جائے گی نہیں بدل جائے گی؟ کہ اب لانے ہی لانے ہیں, اب خوشامد کریں. آپ نے وہاں جو بیت اللہ گئے ہیں حرم رمضان کے مہینے میں, وہ دسترخوان لگتا ہے دسترخوان افطار کے لیے, تو پکڑ پکڑ کر لگ بھائی صاحب ہمارے دسترخوان پر آ جاؤ, ہمارے وہاں افطار کر لو. تو وہ بچے اتنی خوشامد کرتے ہیں کہ ہمارا دل پسیج جاتا ہے, ارے بھائی نہیں اس کے دسترخوان پر جانا ہے. بولا ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ارے بولا ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو ایک تو لانا اور ایک آ جانا, دو میں فرق ہے کہ ایک ہی ہے؟ ارے بولو فرق ہے کہ ایک ہی ہے؟ ایک آ جانا اور ایک لانا. تو لانے کا ایک نظام الگ ہوتا ہے. صحابہ کی صفات میں ہے کہ وہ اپنے ساتھ لوگوں کو کھانے پر ڈھونڈتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو ڈھونڈتے تھے. ایک مرتبہ رو رہے تھے, کیوں؟ کوئی مہمان نہیں آیا. ابراہیم علیہ السلام روزانہ کسی کے ساتھ کھانا کھاتے تھے, کسی کو ڈھونڈتے تھے. تو کسی کو ڈھونڈ کر لانا اس کا فرق ہوتا ہے. تو ہمیں لوگوں پر احسان کرنا ہے. کیا کرنا ہے بولو؟
احسان.
صفت احسان ماں ابراہیم صاحب کے بیان میں اکثر یہ ملتا ہے کہ ہمارے دین میں احسان ہے. تو آئندہ ہم بھی خیال کریں کہ 3 دن جائیں گے تو بھی, چلا جائیں گے تو بھی, اور آئندہ زون میں جائیں گے تو بھی. یہ چیز کو زندہ کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بڑی بات ہو گئی. ماشاءاللہ یہ اور آگے کی بات ہو گئی. چلو اور آگے.
ایک کمپنی میں ایسا بھی ہوا, جس طرح خیال کرتے تو ہمارے روم میں نماز نہیں پڑھے, کیونکہ ہم پڑھ رہے تو انہوں نے بھی اپنے روم میں نماز
شروع کر دی. دیکھو جی بھائی, خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. حضور کی نماز دیکھ کر منافق بھی نماز, ارے بولو بھائی, تو ان کی نماز دیکھ کر غیر مانوس نے بھی نماز. غیرت غیرت, یہ جو کہتے ہیں نا ٹینٹ کا قیام, زمین پر اعمال اور پیدل چلنا, یہ یوں ہوتا ہے. ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہی ہوں. اور ٹیرس پر قیام کرے گا تو کون نماز دیکھے گا؟ کون دیکھے گا؟ کسی کے گھر میں تم چپکے چپکے نماز پڑھے کون دیکھے گا؟ عمر فاروق نے تو بیت اللہ میں نماز پڑھی. صحابہ فرماتے ہیں بس جب انہوں نے بیت اللہ میں نماز پڑھی ہماری ہمت کھل گئی, اس دن سے نماز شروع ہو گئی تھی. انہوں نے فرمایا تھا اب تو کھل کر نماز پڑھیں گے. نماز کی شکلیں وجود میں آ جاتی ہے اس سے. یہ جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا, اس میں ہم تو کیسے ہیں لکیر کے تاریخ کیسے ہیں بولو؟ اس میں اجتہاد نہیں ہوتا کہ وہ تو ایسا کہتے ہیں پر اپنے ایسا کر لیں. نا بھائی, ہم کو تو ایسا ہی کر رہے ہیں جیسا کر رہے کو اس کے نفع ہوتے ہیں. وہ ساری چیزوں کو دیکھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تو آئندہ ایسا ہی کریں گے. ماشاء اللہ بہت اچھی بات.
ان کا اکثر دن بھر تو ان کے کام کے اوقات رہتے ہیں, اس میں چھیڑنا درست نہیں. کوئی آتا تو بھی
صحیح صحیح بھیج دیتے. بہت اچھی بات.
اور کمپنی میں اکثر 3:30 سے 4:45 چائے کا ٹائم رہتا ہے, چائے پینا. تو ہم نے سب کمپنی میں یوں ترکیب کی کہ الحمدللہ کوئی چائے ہماری طرف سے دعوت ہے.
لو بھائی لو بھائی, ماشاء اللہ نیا نیا تکا ملا. کہ وہ چائے پینے جاتے تھے, چائے ہم ہی پلا دیتے تھے.
اور وہ چائے ناشتہ کرتے اسی دوران ان کو غسل اصل پاکی کا مسئلہ رہتا ہے. وہ لوگ اکثر ان کی سوچ رہتی کہ گندے ہو گئے تو ناپاک ہو گئے, تو فٹافٹ 15 منٹ میں چائے پیتے رہتے تھے. غسل کے فرائض
موٹے موٹے باتیں سکھا دیتے تھے. واہ بھائی واہ.
انڈر ویئر پیکیج کرنا آتے ہیں وہاں پہ.
جی جی.
تو پھر 70 کا چھپانا یہ بتا دیتے تھے.
ماشاءاللہ.
تو اکثر پچھلے سال بھی جن کمپنیوں میں یہ محنت کی تھی الحمدللہ, وہ لوگ جو نہیں پہنتا اس کو عیب سمجھتے ہیں. اکثر لوگ لنگی میں ہی نہا رہے ہیں. ماشاءاللہ
دیکھو کتنی بڑی بات. ہماری تو ایک چائے کی پیالی لگی اور اس کی زندگی کا ایک عمل زندہ ہو گیا. وہ 15 منٹ تو فارغ ہو ہی رہے تھے, کہیں چائے پینے جا رہے تھے, تو اس کو کیا کیا انہوں نے؟ چائے انہوں نے اپنی طرف سے پلا دی, آئندہ ہم بھی فکر کریں گے ان چیزوں کی. بہت اچھے, کتنا پیدل چلے آپ؟
8 کلومیٹر کی جی آئی ڈی سی تھی, 6 کلومیٹر, 66 کلومیٹر چلے.
بہت اچھی بات, اللہ قبول. آپ کے ساتھی سب خوش تھے؟
جی جی الحمدللہ.
آپ کے ساتھیوں میں کوئی ایسا تھا جو پہلی بار چلا زون میں؟ کون تھے؟ یہ چوزا بےچارا چھوٹا سا, کیا سنا ہوا؟ کتنے عمر ہے تمہاری؟ 24 مسنون دعا یاد کی. اچھا کون سی دعا یاد کی؟ اچھا سناؤ, چلو کھڑے ہو کر سناؤ بھائی. دیکھو ماشاء اللہ انہوں نے تہجد میں اٹھنے کے وقت کی دعا یاد کی. واہ بھائی واہ, سناؤ. ماشاء اللہ, واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ بھائی, بڑی بات انہوں نے تو یاد کر لی. اور کیا یاد کیا؟ اقام اللہ وادہ, ماشاء اللہ. یہ آپ کو پہلے پتا نہیں تھا؟ ماشاء اللہ. اس کا مطلب یہ جماعت نے اجتماعی عمل بھی مضبوط کیے اور ارے بولو انفرادی دعائیں بھی سیکھی. اچھا ایک جماعت روزانہ اگر ایک دعا سیکھے تو 40 دن میں کتنی دعائیں ہو جائے گی؟ اچھا سچ بتاؤ, روز ایک دعا سیکھنا مشکل ہے کہ آسان؟ صبح تہجد میں سبق لے لیا, ایک دعا چھوٹی سی, اب 24 گھنٹے اس کو رٹتے رہے رٹتے رہے رٹتے رہے, شام تک اس دعا کے ہم کیا ہو جائیں گے؟ حافظ جی بولو ہو جائیں گے. روز ایک جماعت اگر ایک دعا سیکھے تو 40 دن میں, ایک آیت سیکھے تو 40 دن میں, چلیے, اور ایک سنت سیکھے تو روز 40 دن میں 40 سنتیں. اب آئندہ ہم بھی سیکھیں گے ایسا انشاءاللہ. کون کون سیکھے گا؟ واہ بھائی واہ, تشریف رکھو, آپ بھی تشریف رکھو. آ جاؤ بھائی, آخری جماعت, ماشاء اللہ. بہت ہم لوگ نماز زندہ انہوں نے جو طے کی نا, تو میں آپ کو جو کہہ رہا تھا نا تدبیر, ہم پڑوس کے ملک میں تھے تو وہاں کے ایک حاجی صاحب ہیں امتیاز علی صاحب, ان کا کارخانہ ہے, تو ان کے کارخانے میں ہم لوگوں کو لے گئے تھے. ان کے کارخانے میں 5000 آدمی کام کرتے ہیں, 5000 آدمی. تو حاجی صاحب کی ایک عادت تھی, وہ ہمیشہ کہتے تھے نکما, ایسا کہتے تھے, ابے نکمے نکمے کہیں گے, یوں کہتے تھے. تو اس کو ان کو کہا, ابے نکمے کہیں گے تو کچھ کم کرتا وڑتا نہیں ہے, ایسا حاجی صاحب کی عادت تھی تکیہ کلام, ابے نکمے کہیں گے یوں. تو بولو نا حاجی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کہا تیری اتنی بڑی فیکٹری ہے اس میں لوگ نماز کی تو فکر نہیں کرتا, یہ وہ سب. ان کو ٹینشن ہو گئی, حاجی صاحب نے ایسا کہا. تو انہوں نے سوچنا لگ گیا کہ میری فیکٹری میں 5000 آدمی کام کرتے ہیں, وہ نماز نہیں پڑھتے حاجی صاحب کہتے ہیں, ان کا مجھے جواب دینا پڑے گا, وہ نماز والے بن جائیں اس کے لیے کیا کرنا, یہ انہوں نے سوچا. تو انہوں نے آپس میں سوچ کر تدبیر کی. کیا تدبیر کی؟ تبلیغی تدبیر. بولو کون سی تدبیر؟ تبلیغی تدبیر. ہلکے بنا دیے, 5000 آدمی کی کیا بنا دیا, 12 آدمیوں کا ایک ہلکا جماعت, اور اس 12 آدمیوں پر ایک ذمہ دار بنایا کہ تجھے فکر کرنی ہے ان 12 کو نماز سکھانے کی اور نماز سکھا کر نمازی بنانے کی. ٹھیک, پھر یہ کارداری شروع کی کہ روزانہ صبح میں جب تم آؤ تو جب اپنے شام کو جاؤ تو کارداری جب کام کے سناؤ, اس کے ساتھ ان 12 پر کیا محنت ہوئی اس کی پہلے کارداری سنانے کی. تو وہ روزانہ شروع ہو گئی, روزانہ شروع ہو گئی, روزانہ شروع ہو گئی. ہوتے ہوتے گزشتہ سال وہ کہنے لگے کہ اللہ کا احسان ہے, ہمارے 5000 میں ایک بھی بے نمازی نہیں ہے. کتنے بولا؟ ایک بھی بے نمازی. پھر آگے کیا کہا پتا ہے؟ کہ ہم نے ان کے اس پر انعام ان کو دیا. کیا انعام دیا؟ کہ ہم نے یہ انعام دیا کہ ہر جماعت میں, چونکہ آپ نے سب نے کام کیا, 400 جماعتیں ان کی بنی, 12x48 جماعت ان کی بنی. تو جس کا قرا ڈالو, جس کا نام نکل جائے وہ عمرے میں جائے گا. تو کتنے آدمیوں کو عمرے میں بھیجا بولو؟ 400 آدمیوں کو انعام دیا انہوں نے. یہ دل ہوتا ہے جس کو کر رہا ہوتا ہے. تو 400 آدمیوں کو عمرے میں بھیجا, نتیجہ کیا ملا؟ 400 آدمی. اور کہنے لگے ہم نوکری پر تبلیغ والوں کو نہیں رکھتے, جو غیر کوری سلیٹ ہے اس کو لاؤ, اس کو تبلیغ والا بنا, جو کوری سلیٹ ہے جو کچھ نہیں جانتے ان کو لاؤ, ان کو تبلیغ والے بنا کر یہاں سے بھیجو. یہ ٹارگیٹ انہوں نے آخرت بنا دی. ان کی دنیا تو بنی رہی ہے, آخرت بن گئی. اس سال ان کا میسج آیا تھا میرے فون میں, ابھی بھی محفوظ ہے. انہوں نے کیا کہا کہ اس سال ہم لوگوں نے ٹارگیٹ بنایا ہے کہ 5000 میں ایک آدمی بھی جھوٹ نہ بولے. کیا نہ بولے؟ بڑی جھوٹ نہیں, چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ نہ بولے, اس کا ہم نے ٹارگیٹ بنایا ہے آئندہ سال تک میں. تو آپ حضرات دعا کر دینا کہ اللہ پاک یہ ہدف ہمارا پورا کر دے. تو جو نیت کرنے والے ہوتے ہیں نا, ان کو اللہ ایسے ایسے عزائم کی توفیق دیتے ہیں. تو ہمیں 5 مکان نے, 10 مکان نے, 15 مکان, بولا ہمارے لیے کوئی مشکل بات ہے, لیکن وہ بات وہی ہوتی ہے کہ ان کو مانوس کرنا, قریب کرنا, ان کا دل جیت لینا. انہوں نے دل جیت لیا, اب 400 آدمیوں کو عمرے میں بھیج دیا. دیکھو نا ماشاء اللہ, اب جو آدمی اتنا احسان کرتا ہو وہ چھوٹے چھوٹے احسان نہیں کرتا ہوگا. ان بستیوں والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے, ان کے دل جیتنے ہیں اور ان کو اپنے مقصد پر لانا ہے. تو آپ سب نیت کرو, آئندہ ہم بھی ٹارگیٹ بنا دیں گے. کیا بنائیں گے؟ जो यहाँ जो बस्तियां आपको मिले टारगेट बनाओगे? अच्छा कौन कौन बनाएगा? माशाल्लाह, उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? जान और, अच्छा जान और माल लगाना, ये किसका तरीका है कि जान हमारी लगे, माल हमारा लगे, जिंदगियां लोगों की बने, ये किसका तरीका है बोलो? अंबिया का तरीका है, जान हमारी लगे, माल हमारा लगे और जिंदगियां बोलो दूसरों की बने। और दूसरों का क्या तरीका है कि लोगों की जान लो, लोगों का माल लो, जिंदगी हमारी बने, ये दूसरों के तरीके है। हमारा क्या तरीका है? जान हमारी लगे, माल हमारा लगे और जिंदगियां, तो लगाओगे कौन कौन अपनी जान माल लगाएगा? बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह। देखो चलो आप सुनाओ कर दो, कौन सा जोन की जमात थी
ये? वापी हल्के की जमात थी, धर्मपुर नानापुरा जोन की। 13 मकान दिए गए थे, अक्सर जगह पर इबादत खाने हैं,
वहाँ साल भर जमात जाती है?
बहुत सी, अक्सर जगह नहीं जाती है, मतलब एक दो जगह है जहाँ जाती हूँ।
अच्छा अच्छा, वैसे अगर जाए तो कोई हरज तो वहाँ नहीं है?
नहीं कोई हरज।
तो भाई क्यों नहीं जाती है जमात? वो तो वो ठीक है, जमातें 3 दिन की जमातें जा सकती है, उसको अपने रुख में क्यों नहीं लिया? नहीं तो 3 दिन की जमातें आबाद बस्तियों में जहाँ भेजते हो, उसके बजाय अगर इन बस्तियों को निशाना बनाओ तो आबाद बस्तियों में तो कुछ ना कुछ दीन की फिजाएं होती है, कुछ दरस हदीस होता है, कुछ दरस कुरान होता है, कुछ मस्जिद में फिजा होती है, लेकिन ये देहात तो बिल्कुल छुटे हुए हैं, इन देहातों को तो खास निशाना बनाना चाहिए। तो जितनी बनती है उन जमातों की खपत इन देहातों में ज़्यादा करवानी, आइंदा कोशिश करें। और देहातें आपकी जो जितनी भी बन रही है उनको आबाद बस्तियों के बजाय ऐसे देहातों में भेजनी चाहिए जहाँ कुछ मेहनत नहीं है, ठीक है? इसको फिक्र करना। रूट की तरतीब थोड़ी सी इसको देख लें, इसको उसमें जमात के ऊपर बोझ पड़ेगा, लेकिन उनको उठ के फजाइल सुनाओ कि इन बस्तियों में जाकर मेहनत करने पर अल्लाह क्या देंगे। और अगर इतना बड़ा मजमा कर लें तो यही 3 दिन जाने वाला है, तो आप लोग तय कर लो हम जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा आप में से कौन कौन ऐसे देहात में जाएगा? वाह वाह माशाल्लाह, तो 100% हो गए, अब तो काम आसान हो गए। अच्छा हाँ, तो
में से एक ही जगह होटल में काम कायम हुआ बाहर,
बाकी इबादत खाना,
इबादत खाना है। तो उससे करीब में गैरेज वगैरह की दो जगह ऐसी है जहाँ पे मतलब वो लोग गैरेज के अंदर नमाज पढ़ते थे, कभी वो छूट गई थी, तो वहाँ पे इन्होंने नमाज की इरादा किया और फोन पर भी रास्ता कायम किया, नमाज चालू है। और एक जगह पे मतलब उनका कारोबार है बाजार वाला, सुबह से निकल जाते तो ईशा और फजर में रहते, तो अजान के साथ एक जगह पर ईशा की नमाज शुरू हो गई।
आठ इबादत खानों में अब इमाम मौजिन
नहीं, इमाम मौजिन
खाली इबादत खाने बन गए,
बहुत सी जगह मकतब चलते हैं।
इनमें इमाम मौजिन कितने जगह थे?
लगभग 2-3 जगह है ऐसे जहाँ
बाकी नहीं थे। हाँ। तो आपकी मौजूदगी में वहाँ कहीं मुस्तकिल नमाज शुरू हुई किसी इबादत खाने में?
साथ आकर नमाज वगैरह पढ़ती
है, वो तो अलग चीज है, लेकिन आपने अजान नमाज शुरू करवाई, ऐसा कर लेते, इबादत खाना बना हुआ था तो अमल शुरू हो जाता। अच्छा आप कोशिश करते थे कि नमाज में इन सबको बुलाओ? एक तो तरकीब है कि भाई आपने तरकीब दे दी किसी को मिलने गए, और एक नमाज के मौके पर उनको बुलाने जाना, उनको लेने जाना लाना, इसकी कोई फिक्र?
मुलाकात करके जो साथी आते थे उनको नमाज करने के बाद तरकीब भी देते थे कि कम से कम।
अच्छा भाई ये जो कह रहे हैं जो आते थे उनको शरीक करते थे, और हम क्या पूछ रहे हैं लाते थे। अच्छा भाई आते थे और लाते थे में कोई फर्क है?
लाते थे वह जगह से मुलाकात करके उनको लाते थे।
अच्छा
और उनसे ईशा की कम से कम बाहर रहते थे एक नमाज अजान के साथ शुरू करने की।
माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं आपकी बात नहीं समझ सका, माफ करना। आप लाते थे मैं समझ गया, वो आते थे, ये बस हम यही कह रहे थे कि उनको हम लाने की मेहनत करें। कौन से मेहनत करें बोलो? लाने की, वो आ जाए तो उनको हम काम पर लगा देंगे, लेकिन हमारी लाने की तो मेहनत हो, सही गलत? बहुत अच्छी बात, तो कहीं अजान नमाज शुरू नहीं हुई। अच्छा कितने लोगों ने आपके साथ नमाज पढ़ा?
अक्सर जगह मतलब नमाजें पढ़ी है कुछ ना कुछ साथ।
अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब वहाँ शक्ल बनानी चाहिए, ऐसा लग रहा है, तो अब आइंदा जो आपके जिम्मे देहात आए उनको निशाना बनाओगे? हर बस्ती अजान नमाज पर शुरू हो जानी चाहिए, हर बस्ती, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अच्छा कोशिश करते थे कि वहाँ के 100% लोगों से मुलाकात हो जाए?
कोशिश करते थे, और अक्सर जगह हुई जो बाहर रहते थे उनसे मुलाकात नहीं होता।
अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ मस्तूरात से कोई मुलाकात हुई पूरे सफर में?
लगभग 3 या 4 जगह ऐसे जोड़ के मस्तूरात से बात की, और वहाँ से एक एक दो दो मकान या मुर्गी वाले कोई दुकान वाले ऐसे उनकी जगह पे मुलाकात करते थे, और अगर वो फैमिली के साथ रहते तो उनको पर्दे के पास बुला के वहाँ बैठ कर बातें।
हाँ, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि मस्तूरा तो हमारी जरूर बात पहुँचे, हम इसको हल्का ना समझे। क्या ना समझे बोलो?
हल्का।
हमारे वहाँ हम मर्दों की मुलाकात जितनी भी करते हैं हम, और आप अक्सर ये में क्या कहते हैं पता है, दुनिया में मर्दों से ज्यादा कौन है? अरे बोलो, औरतें। और औरतों से ज्यादा
बच्चे,
हम ये कहते हैं। अच्छा, बच्चे अक्सर मर्दों के ताबे होते हैं या औरतों के ताबे होते हैं? औरतों के ताबे होते हैं। 100% बच्चे औरतों के ताबे होते हैं, औरतों के ताबे। औरतें माँ की बोली बोलते हैं। किसकी बोली? माँ की बोली, माँ के विचारों पर वो होते हैं। तो वो 66% वो है, हम 33%। हमारी ये सारी मेहनत 33% में, और 66% वो लोग हैं। अगर हमने उनकी फिक्र नहीं की तो 66% मजमा हमसे बोलो छूट गया। तो एक तरफ तो 33% में हम जिंदा करने की बात है, 66% मुर्दा हो रहा है। तो भाई मुर्दा वाला हिस्सा ज्यादा है या जिंदा वाला हिस्सा ज्यादा है? तो वो मुर्दा वाला ज्यादा हो जाएगा, तो वो गालिब रहेगा। इसलिए हम मस्तूरात को नजरअंदाज न करें। दूसरी बात, मस्तूरात का माहौल पर असर है, जबरदस्त असर है। अभी वजन है उनका, बहुत वजन है। उन्हीं की बात चलती है घरों में। आप देखो अक्सर बात घरों में उन्हीं की चलती है। और अलामत कयामत में से ये है कि जो अलामत कयामत में मुब्तला होंगे ना, उनका हल ये बनेगा कि उनके घरों में उनकी नहीं चलेगी, बल्कि उनकी औरतें उनका किबला बन जाएगी। ये है किबला तो हम निसा ओहम, उनके किबले उनकी औरतें हो जाएगी। जैसे बगैर किबले के नमाज नहीं होती, ऐसे बगैर औरत की मर्जी के घर में कोई काम, वो जो चाहेगी वही होगा, वो जो चाहेगी जैसा चाहेगी, माँ की चलेगी, बीवी की चलेगी। जब उन्हीं की चलनी है तो जो उनकी विचारधारा होगी वही घर में चलेगी, जो उनकी विचारधारा होगी वही बच्चों में मुंतकिल होगी। तो उनकी विचारधारा को बनाना संभालना कितनी बुनियादी बात हो गई, हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं ना। उनकी बड़ी बात है। अब तो माहौल ऐसा हो गया है कि घर की सारी चीजें औरतें लाती है, फर्नीचर भी औरतें पसंद करती है, नल भी पसंद करते हैं, टाइल्स भी वही पसंद, हाजी साहब के कपड़े भी औरतें लाती है। अरे बोला ऐसा नहीं हो रहा? हम हंसते हैं, हंसने की बात है। हाजी साहब के कपड़े भी औरतें लाती है। हाँ, और हज्जन भी नहीं कहते हाजी साहब तुमको समझना पड़े। हाँ, इतना उनका वजन हो। अच्छा, हम पूरे घर वाले सोच लें कि यहाँ रिश्ता करना है, और हज्जन कहे कि नहीं करना, तो होता है वो रिश्ता? अच्छा, अच्छा हम चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए, और हज्जन कहते हैं होना चाहिए, तो उसी के चलते है। इसका इतना माशरे पर वजन है, हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं औरतों का जहन बना लो, अगर उसका बन गया वो हाजी साहब को कवर कर लेगी। उसका जहन बन गया तो हाजी साहब को क्या करेगी? ये फिरौन, उसको उसके ज्योतिष ने क्या कहा, एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरा राजपाट खत्म कर देगा। अच्छा, कौन से खानदान का? फला खानदान का। अच्छा, तो उस खानदान का बच्चा जिंदा रखने का ही नहीं, उस जो बच्चा पैदा उसको मार डालो। तो कितने बच्चे उसने मार डाले? 70,000 या 80,000 बच्चे मार डाले। कि न रहे बांस न बजे बांसुड़ी, उसका चैप्टर ही पूरा कर डालो, बच्चा ही जिंदा नहीं होना चाहिए। अल्लाह को उस बच्चे को वजूद देना था, तो क्या इस्तेमाल किया? क्या हुआ? तो हुआ ये कि अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुई तो उनकी माँ के दिल को धारस बंधा दी, और कहा संदूक में बंद कर और डाल दे दरिया में। माँ को अल्लाह ने इस्तेमाल किया, दरिया में डलवाया, और हजरत आसिया और फिरौन दोनों बैठे थे झूले पर, संदूक तैरता तैरता सामने आया, तो देखा अच्छा ये पेटी में क्या है, पेटी मंगवाई और खोला तो उसमें फूल गया सा बच्चा। पहला जुमला जो फिरौन की जबान से निकला वो क्या था? यही मूसा है, यही वो बच्चा है, यही वो बच्चा है, पहला वो कहने लगा। तो घर वाली बीच में आ गई, कौन? हजरत आसिया। ना 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 ना, ये वो बच्चा नहीं है, ये बच्चा वो नहीं है, तुम्हें क्या पता ये वही बच्चा है, तुम खाम खाम माथे पड़ गए। फिर उसने दलील क्या दी? ये जो कबीला है वो कबीला यहाँ रहता है इस तरफ, तो अगर उस कबीले का लड़का होता तो वो संदूक यूं आता, ये तो यमन की तरफ से आया है, तो दूसरी तरफ से ये संदूक आया, तो वहां का नहीं होगा, तो और कहीं कबीले का आया है, तुम अटकाए माथे ना पड़ो खोटा खोटा। वो चौट पड़ी, वो दलील दे रहा है ना यही बच्चा है, ना ये है ही नहीं, वो यकीन के साथ कह रहा है ये वही बच्चा है, और घरवाली कह रहे ना बिल्कुल ये नहीं है। होते होते फिरौन हार गया और घरवाली जीत गई। ये बच्चा पैदा ना हो इसके लिए 70,000 बच्चे जिसने मारे हैं वो हार गया, और वो बीवी जीत गई। और उसके जहन बनाने पर मर्द को जहन में नहीं था तो भी मानना पड़ा, और मूसा अलैहिस्सलाम उनके घर में 40 साल रहे। कितने साल बोलो? एक औरत के जहन बनाने पर। इतना बड़ा जाबिर और जाबिर और जालिम आदमी, उस वो कुछ नहीं कर सका बीवी के सामने, हार गया, ऐसा अल्लाह ने उसको मलका दिया है। अगर औरतों को समझ में आ गई तो बाजी पलटा देगी। क्या कर देगी बोलो? बाजी पलटा देगी। वो बाजी पलटाने की ताकत उसके अंदर है। हम एक घंटा तश्कील करें और हजन आधा मिनट रोले तो तुम जमात में जाओगे, घर के हालत ऐसे हैं तो गई एक घंटे की तश्कील पानी में, भैंस पानी में, बोलो सही गलत। अच्छा हमने एक घंटा तश्कील की, वो तैयार नहीं है, और हजन ने दो मिनट कह दिया, आप जमात में नहीं जाओगे। हमारे साथ चार महीने में एक जमात में साथी था, तो वो घर में जाने की बात कह रहा था, मैं तो घर जा रहा हूँ। वो अल्लाह ये घर चला जाएगा, क्या मसला है? तो उसको पूछा, क्यों कर, मुझे चावल सेट नहीं होते इसके लिए। तो उसको बहुत जहन साजी की, वो तो तैयार हो, नहीं मैं तो जाऊँगा, नुसरत वाले आएंगे उनके साथ जाऊँगा। तो या अल्लाह, तो हमने फौरन एक खत लिखा, हमारी सासू अम्मा को खत लिखा, क्योंकि उसकी जो बीवी थी ना उसके तालीम का हल्का हमारी सासू अम्मा के साथ था, कि तुम इसको समझाओ कि नुसरत वालों के साथ कुछ पैगाम भेजे कि ये टिक जाए। तो बात पूरी हो गई, नुसरत वाले आए तो उसके नाम एक पैगाम लेकर आए, खत। उसके बाद वो खत उसको दिया, उसके बाद वो खामोश हो गया, पूरा खामोश साइलेंट, कि अम्मी की क्या करिश्मा हुआ, ताज्जुब, तो कुछ भी नहीं, उसको कुछ हमने नहीं कहा, वो खामोश हो गए, हम भी खामोश हो गए। कुछ दिनों के बाद उसको यूं पूछा, अरे भाई हुआ क्या था, तू तो जाने के बाद कह रहा था तो जाना नहीं है, कहना अब नहीं जाना है, और क्या हुआ? कि वो हजन का खत आया था, हजन ने खत में लिखा कि देखो हम तो तबलीग को अड़कते भी नहीं थे, तबलीग में हम जाते भी नहीं थे, तबलीग तो तुम घर में लाए थे, और तुम वो सुनाते थे कि साहबा ने पत्ते चबाए, साहबा ने पत्थर पे पर बांधे और ये और ये, और तुम चावल की वजह से घर आ रहे हो। वो बातें सुन, वो कहाँ गई, तो शर्म आती है घर जाते हुए। चलो बात पूरी हो गई अपनी, वो उसके कदम जम गए, उसने ये खत लिखा कि तुम तो पत्थर की बातें करते थे और वो चावल की बातें करते थे और वो यो और ये और ये, और अब तुम चावल की वजह से घर आते हो, कब कैसे घर जाओ, वो तो ऐसा कहती है। वो बात समझाने का, अब हम एक महीने से माथा फोड़ी करते थे, हमारी नहीं चली, और हजन का खत काम कर गया। उसको अल्लाह ने ऐसी बात समझाने की ताकत दी है, वो उसको क्या कहते हैं पता है, घर वाली। क्या मतलब इसका? वो घर की वाली होती है, रणी धणी वो जो होती है। हाँ, इसलिए हम जिन देहातों में जाएं, जिन बस्तियों में जाएं, मस्तूरात से नजरअंदाज ना करें। हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा पता है आपको? हमारे बुजुर्गों ने यूं कहा कि जब वो देहात मानूस हो जाएं, करीब हो जाएं, तो वहां माहौल बनाने के लिए अगर तीन दिन की मस्तूरात की जमात नहीं जा सकती, तो दो घंटे के लिए, कितने घंटे के लिए, अपने साथियों के साथ वहां मेहमान बनो, उनके गमी में शरीक हो जाओ, उनकी खुशी में मस्तूरात को कवर कर लो। वो हो गई तो इंशाल्लाह वो बात बन जाएगी। इसलिए आप लोग कभी भी कहीं भी जाओ, कोशिश इसकी करो मस्तूरात का जहन साजी जरूर हो, और जब मस्तूरात में बात करनी है तो एहतियात से बात करना चाहिए, छः नंबर के अंदर करनी चाहिए, कोई नामुनासिब बोल जबान से हमारी ना निकले जिससे बाजी खराब हो जाए, या ऐसा ना हो कि जो हमारे उस उसूल और नहज के खिलाफ बातें हैं, तो उससे इंशाल्लाह बहुत आसानी से उन देहातों में काम की शक्लें बन जाएगी। करोगे इसकी फिक्र? हम गुज़िश्ता कामरेज के वहाँ सूरत वालों के कारदारी सुन रहे थे, तो उन्होंने कारदारी सुनाई, मौलवी सलीम की जमात चली पैदल, तो एक गांव में ठहरे कामरेज चौराहे पर, तो वहाँ देखा कि मुसलमानों को ढूंढेंगे, तो एक रक्षे वाले ने कहा यहाँ क्या ढूंढते हो, कहीं कोई मुसलमान, उसको कहा मुसलमान, ये सारा कैंप वाले जितने टेंट है खाना सब मुसलमान, क्या बात करते हो सब मुसलमान, सारे मुसलमान है, अच्छा ये तो पता ही नहीं चल रहा मुसलमान। तो अंदर गए तो वो सब भागने लगे, इधर उधर कोई सुनने को तैयार नहीं। तो एक औरत ने बुलाया, भैया तुम मुसलमान हो? उन्होंने सबने नाम बदल दिए थे, वो खाना बदोश जो लोग हैं राजस्थानी वो सब, तो उन्होंने नाम बदल दिया। उन्होंने कहा कि एक बुढ़ी कहने लगी कि हमारे घर में एक आदमी मर गया था, फातिहा पढ़ दोगे? हम तो फातिहा पढ़ने के लिए ही आए हैं। और बुढ़ी ने दरवाजा खोला तो फातिहा के लिए, तो फिर वो क्या कहा कि मर्दों का फातिहा हम पढ़ देंगे, लेकिन औरतों के लिए तो औरतों को लाना पड़ेगा फातिहा पढ़ने। कोई बात नहीं, आप औरतों को बुला लो। उन्होंने सूरज से अपनी मस्तूरात को बुलाया और फातिहा पढ़ दिया। वो फातिहा ऐसा पढ़ा कि दोस्ती हो गई, और ऐसे जोरदार दोस्ती की कि उनसे उनको दोस्ती हो गई। वो औरतों ने मर्दों को बुलाया जो भाग गए थे, उनको बुलाया सबको, उनको भी फातिहे में बैठना पड़ा, तो तारुफ हो गया, दुआ सलाम खैर खैरियत। अभी उन्होंने सुनाया उस देहा उस खाना बदोश जो टेंट डालते हैं ना, 12 बच्चे सूरत मदरसे में पढ़ते हैं, ये किसने बुलाया सबको? अरे बोलो किसने बुलाया? औरत ने बुलाया है, एक औरत ने जहनसाजी की है। औरतें ऐसा काम कर जाती है, इसलिए कहीं भी औरत के मसले को हम हल्का ना समझें, जहां भी जाएं मुस्कुरात में जहन साजी जरूर करें। करोगे इसके फिक्र इंशाल्लाह? अब तय कर लो, आइंदा साल जो हमको देहात मिलेंगे, इन देहातों को एक साल में ऐसी मेहनत कर डालेंगे आसान तरतीब है कि मर्दों के जरिए मुस्कुरात के जरिए से यूं जहन साजी करके एक साल में मेहनत करके उसको बंजर पने से निकाल देना। हम कितने साल से कह रहे हैं बंजर बंजर बंजर, एक छोटा बच्चा होता है उसको अम्मी लेकर घूमती है ना हाथ में, मेरा नन्ना मुन्ना नन्ना मुन्ना, हम भी हमारा बंजर हमारा बंजर। अभी बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? 10 साल हो गए, अब तो बालिग हो जाना चाहिए। अभी हमारा बालिग नहीं हुआ, अब तो इसको ऐसे मेहनत कर डालो वो बालिग हो जाए। करोगे ऐसी मेहनत तो मर्दों पर मेहनत, लेकिन कैसे, जैसे उन्होंने कहा खिलाकर एहसान करके, उनकी गमी खुशी में शरीक होकर, और इनके आजान नमाज शुरू हो जाए, इनको मानुस करके फलंचा। अगर हर मस्जिद एक देहात को टारगेट बना लेना तो साल भर की मेहनत में जितनी मस्जिदें हैं इतने बंजर देहात कवर हो जाएंगे। बोलो हो सकते हैं नहीं हो सकते तो, और मिलेगा क्या, कब मिलेगा अल्लाह, तुम्हें क्या मिलेगा बोलो, यहाँ तो कोई कुछ नहीं देगा आपको, शाबाशी भी कोई नहीं देगा, बल्कि कर्जदारी सुनाओगे दो डांट पड़ेगी, क्या पड़ेगी, लेकिन तुम्हें मिलेगा कौन, अंसारी साहबा ने हमारे नबी इस्लाम से जब कर्जदारी सुनाई तो क्या फरमाया, अंसारी साहबा एक जमाना ऐसा आएगा कि तुम्हारा जो तुम पर लोगों को तरजीह दे दी जाएगी, लोग तरजीह देने का मतलब कि तुम्हारा जो हक है वो तुम्हें नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे, कान तलवार निकालेंगे और अपना हक वसूल करेंगे, तो क्या फरमाया, ऐसा ना करना, तलवार ना निकालना, तुम्हारा बदला कल कयामत के दिन हौज़े कौसर पर आकर हमसे ले लेंगे। हम सब अंसार हैं, हम सब कौन है, इसलिए हिजरत का दरवाजा बंद हो गया, हिजरत का दरवाजा जो हुजूर के जमाने की हिजरत थी ना, हुजूर ने फरमाया ला हिजरत बाद अल-यौम, वो जो फर्ज हिजरत थी अब कयामत तक नहीं है वो फर्ज हिजरत, लेकिन नुसरत जिंदा है, नुसरत हम सब नुसरत कर सकते हैं, तो हमें भी अंसारी बनकर बदला कहाँ लेना है, हुजूर अलैहिस्सलाम के हौज़े कौसर पर, हमें कहाँ बदला लेना है बोलो, तो हम सबके डांट भी सुनेंगे, सबकी तंबी भी सुनेंगे और काम करेंगे, और बदला किससे लेंगे, अल्लाह से और हमारे नबी अलैहिस्सलाम से हौज़े कौसर पर। तुम में से कौन कौन नियत करता है कि हम अपने नबी से बदला मांगेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नबी वाला काम। तुम में से कौन नियत करता है कि हम करेंगे, अगर तुमने ये कर लिया तो कोई दुनिया में तुमसे खुश हो ना हो कौन खुश हो जाएगा बोलो, दूसरा कौन खुश हो जाएगा, अल्लाह के नबी। कोई हमारा बच्चा खो गया हो, कोई ढूंढ कर लाए, हमारा कलेजा ठंडा हो जाए, मेरा बच्चा ढूंढ कर ले आया, हमारी अम्मी आग में जलती है, बच्चा मेरी अम्मी को बचा लिया, ये हुजूर की उम्मत आग में जलने पर जा रही है, खो गई है, उनको ढूंढ कर ले आएंगे तो कौन खुश हो जाएगा, अल्लाह और उसका रसूल। तो आप राजी नहीं हो कि आपसे अल्लाह और उसका रसूल खुश हो जाए, अरे भाई खुश नहीं हो इससे, तो सब नियत करो कि हम उस काम को करेंगे इंशाल्लाह, इस साल तो ऐसी जी जान से मेहनत कर डालेंगे कि एक भी देहात को बंजर नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए क्या लगाएंगे, अपनी जान और अपना माल, और जिंदगी किसकी बने, दूसरों की, जान हमारी लगे, माल हमारा लगे, और जिंदगी बोलो किसकी बने, कौन कौन ऐसी नियत से मेहनत करेगा, अल्लाह। अब ऐसा करो, हल्के के एतबार से बैठो, मस्जिद के एतबार से बैठो, और अपने जिम्मे देहात लो, कहने देहात दो कि इंशाल्लाह हम इन देहातों को कवर करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह कबूल फरमा। बहुत देर खड़ा रहना पड़ा, मैं आपको बिठाना भूल गए, माफ करना भाई, कितना पैदल चले थे, माशाल्लाह अल्लाह कबूल, तशरीफ रखते, माफ करना आपको मैं बिठाना भूल गया और बात शुरू मैंने कर दी। अच्छा अब हल्के के एतबार से बैठो, और हल्के में फिर मस्जिदों के एतबार से बैठो, और अपने अपने जिम्मे देहात लो, और क्या नियत से कि इंशाल्लाह एक साल की मेहनत करें, क्या करेंगे इसको, इस बंजर पने से इंशाल्लाह इसको, और उसमें क्या करना है, हर देहात में अजान नमाज शुरू करनी है, हर देहात में अजान नमाज, उनके बच्चों की फिक्र और उनके वस्तुरात की फिक्र, ठीक है इंशाल्लाह। चलो बैठते हैं शुरू, देखो वो शैतान बाहर ना ले जाए,